देखिए भैया आगे सबक। बाबू मा युहदसु फी तरीक मन अहदस फी तरीक العامة कनीफन औ मीजाबन औ जुरसुनन औ दुकानन वसिहु ذلك इन लम यजुर بالناس الكنيف المستراح والميزاب مجرى الماء والجرسن البرج وقيل مجرى ماء يركب في الحائط وعن البزدوي رحمه الله تعالى جذع يخرج من الحائط ليبنى عليه يا جذع يخرج من الحائط ليبنى عليه باب ما يحدث في الطريق جنايات کا باب چل رہا ہے بھئی تو اگلا باب ہے باب ما يحدث في الطريق یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں يحدث جو نئی بنائی جائے في الطريق راستے میں وہ نئی چیز جو راستے میں بنائی جائے بھئی ایک عام مسلمانوں کا راستہ ہے کوئی شخص جس کا گھر وہاں ہے وہ وہاں پر گھر کے ساتھ باہر راستے کی طرف بیت الخلا بنا لیتا ہے یا کوئی چبوترا بنا لیتا ہے یا راستے کی طرف کوئی پرنالا نکال دیتا ہے چھت کے اوپر سے پرنالا وغیرہ اور ان کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تفصیل بیان کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو باب ما يحدث في الطريق یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں جو نئی بنائی جائے في الطريق راستے میں احدث يحدث کا معنی کوئی نئی چیز بنانا من احدث في طريق العامة كنيفا او ميزابا او جرسنا او دكانا جس نے بنایا فی طریق العامتی جس نے نیا بنایا فی طریق العامتی عام لوگوں کے راستے میں کنیفن بیت الخلا او میزابن یا پرنالا او جرسنن یا جرسن بنایا او دکانن یا کوئی چبوترا بنایا وسعہ ذالک اس کو ایسا کرنے کی گنجائش ہے اِلَّمْ يَزُرَّ بِالنَّاسِ اگر لوگوں کو اسے تکلیف نہ ہو لوگوں کو اسے ضرر نہ ہو نقصان نہ ہو بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کنیف کہتے ہیں بیت الخلا بھئی اور میزاب کہتے ہیں پرنالا پرنالا وہ جو چھت کے کنارے پر لگایا جاتا ہے پانی تاکہ چھت سے نیچے کی طرف گرے بھئی جیسے بیت اللہ کا پرنالا بھئی آپ نے صورت دیکھی ہوگی تو قدیم زمانے میں اس طرح پرنالے چھتوں پر لگائے جاتے تھے کہ وہ اس کا ایک کنارہ جو ہے وہ چھت کے اندر لگا ہوتا تھا اور دوسرا کنارہ ہوا میں ہوتا تھا تاکہ جو بارش کا پانی ہے چھت سے نیچے گرے اور دیوار سے علیحدہ دور گرے کیونکہ دیوار کے ساتھ پانی گرے گا تو دیوار اگر کچی ہوگی اس کو وہ نقصان پہنچائے گا جرسن کسے کہتے ہیں جرسن کے آگے تفصیل آ رہی ہے بھئی تو کہتے ہیں من احدث فی طریق العامتی جس شخص نے بنایا عام لوگوں کے راستے میں کنیفن بیت الخلا او میزابن یا پرنالا او جرسنن یا جرسن بنایا او دکانن یا چبوترا بنایا دکان جو ہے دکان کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح چبوترے کو بھی کہتے ہیں کوئی اونچی جگہ بیٹھنے کی بنائی بھئی اونچی جگہ بیٹھنے کی بنائی اپنے گھر کے ساتھ لیکن عام راستے میں بنائی تو کہتے ہیں وَسِعَهُ ذَلِكَ اس کے لیے اس کی گنجائش ہے یعنی اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے اس لیے کیونکہ عام راستہ ہے سب لوگوں کے اس میں گزرنے کا جیسے حق ہے اس کا بھی حق ہے تو یہ اپنے حق میں کیا کر رہا ہے تصرف کر رہا ہے جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کسی کو نقصان نہ پہنچے اگر نقصان پہنچا تو اس پر ضمان آئے گا اور اگر لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے پھر تو بنانا ہی جائز نہیں اگر نقصان نہیں پہنچتا تو بنا سکتا ہے لیکن اگر کسی کو نقصان پہنچ گیا تو اس پر ضمان آئے گا اور اگر لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے بنانے سے ہی نقصان پہنچتا ہے تو پھر تو بنانا ہی جائز نہیں ہے یہ معنی ہے وَسِعَهُ ذَلِكَ اس کے لیے اس چیز کی گنجائش ہے اِلَّمْ يَزُرَّ بِالنَّاسِ اگر لوگوں کو اس سے نقصان نہ ہو اب معنی بیان کر رہے ہیں الکنیف المستراح کہ کنیف جو ہے مستراح کو کہتے ہیں یعنی بیت الخلا بھئی والمیزاب مجر الماء اور میزاب جو ہے مجر الماء پانی بہنے کی جگہ یعنی پرنالا والجرسن اور جرسن جو ہے کہتے ہیں البرج وہ گمبت کو کہتے ہیں گمبت یا چبوترا وغیرہ کوئی بنایا بھئی गुंबद बनाया छत के दीवार पर या छत पर जो रास्ते की तरफ निकला हुआ था। वकील, और कहा गया है मजरा माई युरक कबू फिलहा इती, और कहा गया है पानी बहने की जगह जो जोड़ी गई हो दीवार में, पानी बहने की जगह जिसको जोड़ा गया हो दीवार, यूं कह कोई लोहा वगैरह ऐसा दीवार पर लगाया है कि पानी उस दीवार के ऊपर कुछ दूर तक इसी के ऊपर बहता है और फिर नीचे गिरता है। तो ये है जुरसुन। बाजों ने कहा बुर्ज, वो गुंबद वगैरह या कोई ऐसी चीज बनाई रास्ते के ऊपर अपने घर से बाहर, और बाजों ने क्या कहा कि दीवार के साथ जुड़ी हुई कोई पानी बहने की जगह बनाई। वह अनिल बजदवी रहमहुल्ला, और इमाम बजदवी रहमहुल्ला फरमाते हैं जज़ई यखरुज मिनल हाइती, वो शहतीर जो निकला हुआ हो दीवार से लियुबना अलैही, ताकि उस पर तामीर की जाए। भाई पहले जमाने में तो शहतीर इस्तेमाल होते थे छत बनाने के लिए, तो शहतीर इस तरीके से दीवार पर रखा कि एक तरफ तो कमरा है, एक तरफ तो शहतीर के क्या है कमरा बनेगा, और शहतीर का एक किनारा जो है वो रास्ते की तरफ जरा लंबा रखा ताकि जरा बाहर को निकला हुआ हो रास्ते में, ताकि इसके ऊपर भी कुछ हम बना लें, कोई साइबान बना लें। इमाम बजदवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो जो शहतीर का हिस्सा दीवार से बाहर निकला हुआ है रास्ते की तरफ, वो है जुरसुन। भाई जुरसुन तो मुख्तलिफ तफासीर की हैं उलमा ने इसकी। भाई हां, बाजों ने कहा कि दो छतों के दरमियान या दो दीवारों के दरमियान कोई लकड़ी रख देना, ताकि एक दीवार से दूसरी दीवार तक कोई ऊपर से जाना चाहे तो जा सके, उसको जुरसुन कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ मानी बयान किए हैं। तो बहरहाल जो भी ऐसी चीज बनाई रास्ते की तरफ तो उसके लिए जायज तो है, लेकिन शर्त यह है किसी को नुकसान ना पहुंचता हो। जज़ऊं यखरुज मिन अलहायती, शहतीर जो निकला हुआ हो दीवार से लियुबना अलैही, ताकि उस पर तामीर की जाए, यानी कोई साइबान वगैरह या कुछ बना लिया जाए। वलिकुल्लिन नक़्ज़ुहू, और हर एक के लिए जायज है इसको तोड़ना। नक़्ज़ा यनक़्ज़ु के माने हैं तोड़ना, बनाना भी जायज, लेकिन उसमें क्या शर्त, किसी को नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। और हर गुजरने वाले के लिए उसको तोड़ना भी जायज है, चाहे किसी को नुकसान न भी हो, क्योंकि यह रास्ता आम लोगों का है, हर आदमी का इसमें हक है। तो यह गोया एक मुश्तरका हक में तसरुफ कर रहा है, तो इसमें बाकी साथियों की मर्जी है, वो इसको छोड़ें, वो इसकी इजाजत दें या इजाजत ना दें। इजाजत नहीं देते, तोड़ देते हैं, वो तोड़ सकते हैं। कहते हैं वली कुल्लिन नक़्ज़ुहू, और हर एक के लिए उसको तोड़ना जायज है। वली कुल्ली वाहिदिन, और हर एक के लिए जायज है नक़्ज़ुहू, इसका तोड़ना। ऐ फी सूरतिन लम यज़ुर्र बिन्नास, यानी उस सूरत में जब ये लोगों को नुकसान न दे, उस सूरत में भी तोड़ना हर एक के लिए जायज है। फल हासिल, हासिल कलाम ये अन्नहू इन अज़र्र बिन्नास ला यजूज़ु लहू अन यफ़अला, कि अगर ये नुकसान देता है, जरर देता है लोगों को, तो फिर तो जायज ही नहीं है इसके लिए ऐसा करना। व इल्लम यज़ुर्र बिहिम यजूज़ु, और अगर ये लोगों को जरर नहीं देता, तकलीफ नहीं देता, तो फिर इसके लिए जायज है। लाकिन माज़ालिका यकून लिकुल्लि वाहिदिन नक़्ज़ुहू, लेकिन इसके बावजूद हर एक के लिए जायज है इसको तोड़ना। लिअन्नहू तसर्रुफ़ुन फी हक़्क़िल मुश्तरकी, इसलिए क्योंकि यह तसर्रुफ है मुश्तरका हक में, उस रास्ते से गुजरना हर एक का हक है, तो यह मुश्तरका हक में तसर्रुफ किया इसने। फलिकुल्लिन नक़्ज़ुहू, तो हर एक के लिए जायज है इसको तोड़ना। कमा फिल मिल्किल मुश्तरकी मा अन्नहू लम यज़ुर्र, जैसे कि मिल्क मुश्तरक में, बावजूद उसके कि वो नुकसान न दे। सूरत मसला ये, एक जमीन है, पांच आदमियों में मुश्तरका है, एक शख्स उस जमीन के अंदर एक साइबान बनाता है, उन शरीकों में से एक क्या करता है उस जमीन के अंदर, ताकि धूप के अंदर कोई इसके नीचे खड़ा हो सके या बैठ सके। अब उसके उसका भी इस जमीन के अंदर हक है, लेकिन चूंकि उसने बाकी साथियों से इजाजत नहीं ली, लिहाजा बाकी साथियों को इसको गिराने का हक है, चाहे किसी का नुकसान हो इसमें चाहे ना हो, नुकसान हो या ना हो, क्योंकि ये मुश्तरका है तो इसको इजाजत लेनी चाहिए भाई। तो अब ये नहीं देखेंगे कि अगर नुकसान नहीं पहुंचता तो इसको बना रहने दो, कोई नहीं गिरा सकता, नहीं नहीं मुश्तरका जमीन है, इसको सबसे इजाजत लेकर बनाना चाहिए था, लिहाजा नुकसान न भी दे फिर भी बाकी साथियों को इसको गिराने की इजाजत है अगर इसने बगैर इजाजत के किया हो। तो यह माना है कमा फिल मिल्किल मुश्तरकी, जैसे कि मुश्तरका मिल्कियत के अंदर मा अन्नहु लम यज़ुर्रा, बावजूद इसके कि उसका कोई नुकसान नहीं कोई जरर नहीं फिर भी वो गिरा सकते हैं। वफी गैर नाफिजिन ला यसअहु बिला इज़्नि शुरकाई, और गैर नाफिज के अंदर, नाफिज वो रास्ता जो दोनों तरफ खुला हुआ हो, वो गली वो सड़क जो दोनों तरफ खुली हुई हो, लोग गुजरते हैं इस तरफ से दूसरी तरफ निकल जाते हैं, और गैर नाफिज वो गली जो एक तरफ से बंद हो, बंद हो। याद रखो ये जो गली खुली हुई है दोनों तरफ से, ये आम गली है, हर शख्स को इसमें से गुजरने का हक है, उस गली वाले किसी को नहीं रोक सकते क्योंकि ये रास्ता है दोनों तरफ खुला हुआ है। हां तो फिर अगर ये गली एक तरफ से बंद है फिर इस सूरत में हर एक का हक वहां से गुजरना नहीं है, सिर्फ गली वालों का हक है। तो अगर गली बंद है, इस बंद गली के अंदर बंद रास्ते के अंदर कोई इस तरह की चीज बनाता है तो बगैर शरीकों की इजाजत के नहीं बना सकता, जितने गली वाले हैं उनकी इजाजत के बगैर नहीं बना सकता, चाहे किसी को नुकसान न पहुंच रहा हो फिर भी नहीं बना सकता इजाजत के बगैर। ये माना है वफी गैर नाफिजिन, और गैर नाफिज गली में यानी जो बंद हो, ला यसअहु उसके लिए इसकी गुंजाइश नहीं ये कि वो ऐसी चीज बनाए, बिला इज़्नि शुरकाई शरीकों की इजाजत के बगैर, व इल्लम यज़ुर्र बिन्नास अगरचे वो लोगों को जरर न दे वो चीज फिर भी नहीं बना सकता इजाजत के बगैर। वज़मिना आकिलतुहु दियतम मम्मात बिसुकूतिहा, भाई ये चीज गिरी पर नाला बनाया था वो गिर गया, या बैतुल खला बनाया था वो गिर गया, या उसने वो जो जुरसुन बनाया था वो शहतीर वगैरह या कोई जो पानी की नाली बनाई थी दीवार के ऊपर वो गिर गई, या वो चबूतरा गिरा भाई उससे कोई शख्स मर गया, तो ये जो बनाने वाला है इसकी आकिला जामिन होगी, वो दियत अदा करेंगे। माना समझ में आ गया? ये माना है वज़मीना आकिलतुहु, और इस बनाने वाले की आकिला जो है वो जामिन होगी, दियत मम्मा तब सुकूतिहा उस शख्स की दियत का जो मर गया इस इन चीजों के गिरने की वजह से, कमा लौ वज़अ हजरन औ हफ़रा बिरन फी तरीक़ी, जैसे भाई कहते हैं किसी ने रास्ते में कोई पत्थर रख दिया, किसी ने रास्ते में कोई पत्थर रखा और कोई गुजरने वाला उससे ठोकर खाकर गिरा और मर गया, या किसी ने रास्ते में कुआं खोद दिया और कोई गुजरने वाला उस कुएं में गिरा और वह मर गया, तो ये जो पत्थर रखने वाला है या जो कुआं खोदने वाला है इसकी आकिला उस दियत की जामिन होगी, उनको दियत अदा करना पड़ेगी। यह माना है कमा लौ वज़अ हजरन औ हफ़रा बिरन फी तरीक़ी, जैसे किसी ने रखा कोई पत्थर औ हफ़रा बिरन या कुआं खोदा, फी तरीक़ी रास्ते में, फतलिफन नफ्सु तो उसमें कोई जान हलाक हो गई, फइन तलिफा बिही बहीमतुन ज़मीना हुआ, अगर इसमें कोई जानवर जो है तलफ हो गया हलाक हो गया, बहीमा मवेशी चौपाए वगैरह उनमें से कोई इसमें हलाक हुआ, जमीना हुआ वो शख्स जामिन होगा। भाई देखो किसी की कोई जान ले ले गलती से या उसके किसी उज्व को तलफ कर दे ये है जिनायत, इसका जमान तो आकिला पर आएगा, किस पर आएगा? लेकिन अगर किसी को माली नुकसान पहुंचाता है, माल का जो नुकसान है वो आकिला नहीं उठाती, तो वो खुद अदा करना पड़ेगा। तो इसके कुएं की वजह से या इसके पत्थर की वजह से किसी का मवेशी हलाक हो गया, घोड़ा गधा या खच्चर या गाय बकरी वगैरह कोई चीज इससे गिर गई, तो ये जानी नुकसान पहुंचाया या माली नुकसान पहुंचाया? ये चीजें क्या हैं? ये माल हैं, तो ये माली नुकसान हुआ और माली नुकसान आकिला पर नहीं आता, वो उसको खुद अदा करना पड़ेगा। ये माना है फइन तलिफा बिही बहीमतुन ज़मीना हुआ, अगर इसके अंदर कोई चौपाया हलाक हो गया तो वो खुद जामिन होगा, इल्लम यअज़म बिहिल इमामु अगर इमाम ने यानी हाकिम वक्त ने उसकी इजाजत नहीं दी, अगर हाकिम वक्त ने इसकी इजाजत नहीं दी तो फिर ये खुद जामिन होगा। भाई अगर इसने वो पत्थर हाकिम में वक्त के हुक्म पर रखा है या उसके कहने पर खोदा है यह कुआं उसने, तो फिर इस सूरत में तो इस पर जमान नहीं आएगा भाई। ये माना है इल्लम यज़न बिहिल इमाम, अगर इमाम ने उसको इजाजत न दी हो। कहते हैं फ़इन्ना ज़मान फ़ी जमी इमादु की रबी इहदास शय इन फी तरीकिल हामती इन्नमा यकूनु इज़ा लम यज़न बिहिल इमाम। कहते हैं इसलिए क्योंकि जमान जो है फी जमी माजुकीरा इन तमाम चीजों के अंदर जो जिक्र की गई भी इहदास इशय इन फी तरीक आम मती बसूरत कोई नई चीज बनाने के आम लोगों के रास्ते में इन नमा यकून, ये जमान जो है इन तमाम सूरतों में उस शख्स पर यह जमान होगा इदा लम यज़न बिहिल इमाम, जब उसको इमाम ने इजाजत न दी हो। अगर इमाम ने उसको इन चीजों की इजाजत दी थी तो फिर इस पर जमान नहीं आएगा भाई। फइन अदिनल इमामु औ मा तवाकिउन फी बिरी तरीकिन जुअन औ गम्मन फला। सूरत मसला ये, अगर हाकिम वक्त ने उसको इजाजत दी थी कुआं खोदने की और उसने रास्ते में कुआं खोद दिया, उसका हुक्म था इसने कुआं खोद दिया, या इमाम के कहने पर पत्थर रखा था, अब इसके अंदर इस कुएं में कोई शख्स गिरा और मर गया या इस पत्थर से ठोकर खाकर कोई शख्स मर गया, तो इसका जमान इस रखने वाले पर नहीं क्योंकि इसको हाकिम वक्त ने हुक्म दिया था। और अगर इसने खुद कुआं खोदा था और फिर इस कुएं के अंदर कोई आदमी गिर गया, लेकिन वो आदमी कुएं में गिरने से नहीं मरा बल्कि भूख या सांस घुटने की वजह से मर गया, तो कहते हैं इस सूरत में इस शख्स पर जमान नहीं आएगा। सूरत समझ में आ रही है, रास्ते में कुआं खोदा था, अगर कोई शख्स उस कुएं में गिरा और मर गया फिर तो जमान आएगा, लेकिन वो ये सूरत जिक्र कर रहे हैं कोई शख्स कुएं में गिरा, गिरने से नहीं मरा, गिरने से उसको कुछ भी नहीं हुआ, हां कुएं के अंदर भूख की वजह से वो मर गया, पहले ही उसको भूख लगी हुई थी शदीद भूख भई, और अब कुएं में गिर गया तो खुराक तक न पहुंच सका और हलाक हुआ, या कुएं में सांस घुटने की वजह से वो मर गया, तो इस सूरत में उस पर जमान नहीं आएगा भाई। तो कहते हैं फइन अदिनल इमाम, अगर इमाम ने उसको इजाजत दी औ माता, ये अलग सूरत जिक्र करें, औ माता या मर गया वाकिउन फी बिरी तरीकिन, वो जो वाकई का माना गिरने वाला, या मर गया वाकिउन वो जो गिरा था फी बिरी तरीकिन रास्ते के कुएं में, ये यूं तर्जमा करो औ माता वाकिउन फी बिरी तरीकिन, या रास्ते के कुएं में गिरने वाला मर गया जुअन भूख की वजह से औ गम्मन या सांस घुटने की वजह से फला, तो फिर जमान नहीं आएगा क्योंकि कुएं में गिरने से वो शख्स नहीं मरा बल्कि दूसरे सबब से मरा है, सांस घुटने से मरा है या भूख से मरा है। हाजा इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, ये इमाम साहब के नजदीक है। व इंद अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह इन मा तगम्मन यजिबु ज़मान, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो सांस घुटने की वजह से मरा है तो यजिबु ज़मान, ज़मान उस खोदने वाले पर वाजिब होगा। لِأَنَّ الْغَمَّ بِسَبَبِ الْوُقُوعِ, इसलिए क्योंकि जो सांस घुटा है वो गिरने की वजह से है। وَالْمُرَادُ بِالْغَمِّ هَاهُنَا الْإِخْتِنَاقُ مِنْ هَوَاءِ الْبِئْرِ, और गम से यहां पर मुराद अल-इख्तिनाकु सांस का घुटना है, मिन هَوَاءِ الْبِئْرِ कुएं की हवा से, कुएं की हवा की वजह से सांस का घुटना मुराद है, तो गम से यहां वो रंज और दुख और तकलीफ मुराद नहीं है बल्कि यहां सांस का घुटना मुराद है। ये माना है वल मुरादु बिल गम हा हुनल इख्तिनाक मिन हवा इल बिरी, और गम से यहां मुराद जो है वो सांस का घुटना है कुएं की हवा की वजह से। वमन नहा हजरा वज़अहु आखरु फ़अतिब बिही रजुलुन ज़मीना, सूरत मसला ये, एक शख्स ने रास्ते में एक पत्थर रखा, दूसरा शख्स आया उसने वो पत्थर उठाकर दूसरी जगह रख दिया, अब इस पत्थर से कोई टकराकर मर गया तो जमान पहले पर है या दूसरे पर? कहते हैं जमान दूसरे शख्स पर है, इसलिए क्योंकि पहले ने जहां रखा था उस पहले का फेल था, लेकिन जब दूसरा आया और उसने इस पत्थर को उठाकर दूसरी जगह रख दिया तो गोया पहले के फेल को उसने खत्म कर दिया और अपने फेल को वहां वजूद दे दिया, तो अब जो गिरेगा उसकी निस्बत उस दूसरे शख्स की तरफ होगी जिसने नई जगह पर पत्थर को रखा। बात समझ में आ गई? यह माना है वमन नहा हजरन, नहा यूनहि का माना एक तरफ करना, वमन नहा हजरन, और जिसने एक तरफ किया ऐसे पत्थर को, वजाहू आखरू जो किसी दूसरे ने रखा था। तर्जमा समझ में आ रहा है भाई? वमन नहा हजरन वजाहू आखरू, और जिसने एक तरफ कर दिया उस पत्थर को जो किसी दूसरे ने वहां रखा था, फातिब बिही रजुलन, तो उससे कोई इंसान हलाक हो गया, जमीना तो ये दूसरा आदमी जामिन होगा, लिअन्न फिअल अव्वलिन फसख बिफिअल सानी, इसलिए क्योंकि पहले आदमी का फेल जो है वो फसख हो गया वो दूसरे आदमी के फेल की वजह से, फजमान वाला सानी तो जमान दूसरे आदमी पर होगा, कमन हमल शयअन फि तरीक यस्कुत मिन्हु अला आखरा। सूरत मसला ये कहते हैं ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स कोई बोझ लेकर रास्ते में चल रहा था, कोई चीज उठाकर रास्ते में चल रहा था, और फिर वो रास्ते में वो चीज उससे गिरी किसी दूसरे आदमी पर और वो शख्स हलाक हो गया, तो इस चीज उठाने वाले पर जमान आएगा क्योंकि इसकी गलती से क्या हुआ है, दूसरे की जान गई है। या इसी तरह कहते हैं कोई शख्स जो है कोई चटाई लेकर मस्जिद में गया, चटाई ले गया मस्जिद के लिए, औ किंदीलिन, या कोई शख्स जो है शमा जो है, किंदील शमा को कहते हैं रोशनी के लिए जिसको जलाया जाता है, या कोई शख्स जो है शमा लेकर गया मस्जिद में, औ हसातिन, या कंकरियां लेकर गया मस्जिद में, फिर मस्जिद गैरी ही किसी दूसरे की मस्जिद में, एक तो अपने महल्ले की मस्जिद है एक है दूसरे महल्ले की मस्जिद, उसमें वो चीजें लेकर गया, या कोई शख्स मस्जिद में बैठा था नमाज नहीं पढ़ रहा था वैसे बैठा हुआ था और कोई उस पर गिरा और मर गया, मसलन कोई नाबीना आया और उसे टकरा कर गिरा और मर गया, तो इन तमाम सूरतों में ये जो चटाई ले जाने वाला है या शमा ले जाने वाला है या कंकरियां ले जाने वाला है इन पर जमान आएगा। भाई देखिए भाई, कमन हमला शयअन फित तरीकी, जैसे कि वो शख्स जिसने उठाया किसी चीज को रास्ते में, यस्कुतु मिनहु, और वो चीज गिर गई उससे, अला आखरा किसी दूसरे आदमी पर, औ दखल बिहसीरिन, या कोई आदमी चटाई लेकर दाखिल हुआ, चटाई के साथ मस्जिद में, मस्जिद के लिए चटाई ले गया कि लोग इस पर नमाज पढ़ेंगे, औ दखल बिहसीरिन, या चटाइयों के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ, औ किंदीलिन, किंदील कहते हैं शमा को भाई जो इस पर आग जलाकर रोशनी की जाती है, औ किंदीलिन, या वो मस्जिद में दाखिल हुआ शमा लेकर, औ हसातिन, या वो मस्जिद में दाखिल हुआ कंकरियां लेकर, फी मस्जिद गैरी ही, किस मस्जिद में, अपनी या गैर की, अपनी मस्जिद में ये लेकर गया है फिर जमान नहीं आएगा क्योंकि ये लोग मस्जिदों में ये चीजें लेकर जाते हैं सवाब के लिए, यहां दूसरे की मस्जिद में अगर ये चीजें लेकर गया तो इमाम साहब के नजदीक जमान आएगा, साहिबैन फरमाते हैं जमान नहीं आएगा, इसीलिए गैरी ही की कैद लगाई कि इमाम साहब के नजदीक ये ऐसा है, किसी दूसरे की मस्जिद में लेकर गए हो तो आपके लिए जायज है, आप ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि किसी को इससे नुकसान ना पहुंचे, तो नुकसान जब पहुंच गया है तो अब जमान देना पड़ेगा, तो दूसरे की मस्जिद में ले गया, और जल असफी ही गैर मुसल्लिन, या बैठा मस्जिद के अंदर इस हाल में कि वो नमाज पढ़ने वाला नहीं था, फातिबा बिही अहदुन, तो इसकी वजह से हलाक हो गया कोई शख्स, नहु मिसाल के तौर पर, अब शरा में सूरतें बयान करेंगे कैसे मरता है, इनसे कोई आदमी बतला रहे, नहु इन सकतल हसीरु अविल किंदीलु अला अहदिन, कि वो चटाई गिर गई या वो किंदील गिर गई किसी पर, गिर गई किसी पर, औ सकत ज़र्फुल्लज़ी फीहिल हसातु अला अहदिन, या वो बर्तन गिर गया जिसके अंदर कंकरियां थी, अला अहदिन किसी शख्स पर, औ कान जालिसन गैर मुसल्लिन फसकत अलैहि अमा, या वो बैठा हुआ था बगैर नमाज के यानी नमाज नहीं पढ़ रहा था, फसकत अलैहि अमा, तो उस पर कोई अंधा शख्स गिर गया, ज़मीना, तो इन तमाम सूरतों में वो ज़ामिन होगा, ला मन सकता मिनहू रिदा उन लबिसहू। सूरत ये एक शख्स ने एक चादर ओढ़ी हुई थी भाई और वो चादर उसके हाथ से गिरी और उसकी वजह से कोई शख्स हलाक हुआ, तो कहते हैं ला मन सकता मिनहू रिदा उन लबिसहू, वो शख्स जामिन नहीं होगा कि जिससे कोई ऐसी चादर गिर गई, लबिसहू जिसको उसने पहना हुआ था यानी ओढ़ा हुआ था। आप हैरान होंगे कि भाई चादर से कोई कैसे शख्स हलाक हो गया, भाई देखो مثلا ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، براستے میں چل رہا تھا اور وہ چادر اس کے سر سے گری اور پیچھے آنے والے آدمی کے پاؤں میں پھنس گئی اور وہ گرا اور اس کا سر نیچے لگا اور وہ ہلاک ہو گیا. یا وہ چادر کسی بچے کے اوپر، چھوٹا بچہ ساتھ چل رہا تھا، اس کے اوپر گری اور وہ بچہ ساتھ ہی گرا، کسی کوئی چیز اس کو لگی اور وہ ہلاک ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھا چادر گرنے سے کیا ہوا، اس کی جان چلی گئی. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ او ادخل هذه الاشياء في مسجد حيه، یا اس نے یہ چیزیں داخل کی اپنے محلے کی مسجد میں. او جلس فيه مصليا، یا وہ بیٹھا ہوا تھا مسجد میں اس حال میں کہ مصليا وہ نماز پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں هذا عند ابي حنيفه رحمه الله، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. وعندهما لا يضمن بادخال هذه الاشياء في المسجد، اور صاحبین کے نزدیک وہ ضامن نہیں ہوگا یہ چیزیں مسجد میں داخل کرنے سے. سوا ان کا نہ مسجد حیہ او غیرہ، چاہے اس کے اپنے محلے کی مسجد ہو، او غیرہ یا کسی دوسرے محلے کی مسجد ہو. لأن القربة لا تتقيد بشرط السلامة، اس لیے کیونکہ قربت جو ہے یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، یعنی عبادت. کیا مراد ہے؟ عبادت کس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. لأن القربة لا تتقيد بشرط السلامة، اس لیے عبادت کو یا کوئی ثواب کا کام، ثواب کا کام. لأن القربة، اس لیے کیونکہ جو ثواب کا کام ہے، لا تتقید بشرط السلامتی، وہ مقید نہیں ہے سلامتی کی شرط کے ساتھ. کوئی شخص ثواب کا کام کرتا ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ وہ سلامتی کے ساتھ مقید ہو، وہ اپنی طرف سے ثواب کا کام کر رہا ہے تو اس میں اگر کسی کو نقصان پہنچ جائے تو زمان نہیں آئے گا. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کام اس کے لیے جائز تھے، لیکن یہ اپنے محلے کی مسجد میں چیزیں نہیں لے کر گیا، کسی دوسرے محلے کی مسجد میں لے کر گیا، اور دوسرے محلے کی مسجد میں یہ چیزیں لے جانا اس کے لیے جائز تھا، لیکن ضروری تھا کہ اس میں سلامتی ہو، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو صاحبین فرماتے ہیں نہیں، چاہے اپنے محلے کی مسجد ہو چاہے کوئی دوسری مسجد ہو، ان چیزوں سے زمان نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کام ثواب کے لیے وہ کر رہا ہے، اور جو کام ثواب کی نیت سے کیا جائے اس کا سلامتی کے ساتھ مقید ہونا ضروری نہیں. یہ مانا ہے، صاحبین کی دلیل چل رہی ہے. لأن القربة لا تتقید بشرط السلامتی، اس لیے کیونکہ ثواب کا کام جو ہے وہ مقید نہیں ہوگا سلامتی کی شرط کے ساتھ. لہو، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان تدبیر المسجد لأهله دون غیرهم، کہ مسجد کی جو تدبیر ہے یعنی مسجد کا جو انتظام ہے وہ مسجد والوں کی ذمہ دار، وہ مسجد والوں کے لیے ہے نہ کہ ان کے علاوہ کے لیے. مسجد کا انتظام کس کے ذمہ ہے؟ مسجد والوں کے ذمہ ہے، دوسروں کے ذمہ نہیں ہے. ففعل الغیر مباح، دوسروں کا فعل مباح ہے، جائز ہے. فیکون مقیدا بشرط السلامتی، تو یہ مقید ہوگا سلامتی کی شرط کے ساتھ. وعندهما، اور صاحبین کے نزدیک. الجالس فی المسجد لا یضمن، جو شخص مسجد میں بیٹھا ہو وہ ضامن نہیں ہوگا. سوا ان جلس للصلاۃ او غیر الصلاۃ، چاہے وہ نماز کے لیے بیٹھا ہو یا ویسے بیٹھا ہو. فالحاصل، حاصل کلام یہ ہے کہ ان الجالس للصلاۃ فی المسجد لا یضمن عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ سواء فی مسجد حیہ او غیرہ. حاصل کلام یہ کہ مسجد میں بیٹھنے والا نماز کے لیے، الجالس للصلاۃ فی المسجد، وہ شخص جو نماز کے لیے بیٹھا ہے مسجد میں، لا یضمن، وہ ضامن نہیں ہوگا. عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک. سوا ان فی مسجد، بھئی ایک شخص نماز کے لیے بیٹھا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، جماعت ہونے والی ہے، اس کے انتظار میں آ کر بیٹھا ہے، اور ایک ہے ویسے مسجد میں عام وقت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے یا ویسے بیٹھا ہے، لیکن بہرحال نماز کے لیے نہیں بیٹھا. تو امام صاحب دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ جو نماز کے لیے بیٹھا ہے اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے گا تو وہ ضامن نہیں، اور ویسے بیٹھا ہے کسی کو نقصان پہنچا تو وہ ضامن ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ مانا ہے. فالحاصل، حاصل یہ ہے کہ ان الجالس للصلاۃ فی المسجد لا یضمن عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، کہ جو نماز کے لیے مسجد میں بیٹھا ہو وہ ضامن نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک. سواء فی مسجد حیہ او غیرہ، چاہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں ہو یا اس کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں ہو. والجالس لغیر الصلاۃ یضمن سواء فی مسجد حیہ او غیرہ، اور جو شخص نماز کے علاوہ کے لیے بیٹھا ہے تو وہ ضامن ہوگا چاہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں ہو یا اپنے محلے کے علاوہ دوسری مسجد میں ہو. तो याद रखिए इसमें फतवा साहिबैन के कौल पर है भाई, कोई मस्जिद में चाहे नमाज के लिए बैठा हो चाहे वैसे बैठा हो, कोई हलाक हो जाए तो उसमें जमान नहीं आएगा भाई। और इसी तरह कोई मस्जिद के अंदर कोई चीजें ले जाता है, चाहे अपनी मस्जिद में लेके जाए चाहे किसी दूसरे की मस्जिद में लेकर जाए, जब वो सवाब की नीयत से चीजें लेकर गया है और इससे किसी को कोई नुकसान हुआ या किसी को कोई नुकसान पहुंचा तो इसमें जमान नहीं आएगा, इस पर फतवा है। बात समझ में आ गई। वफी सुकूत रिदाई नमा लायस मनोइंदा मोहम्मद इन रहमल्ला। अच्छा, चादर किसी ने ओढ़ी हुई थी भाई और वो किसी पर गिरी और वो मर गया, वो किसी पर गिरी और वो
मर गया।
मर गया। तो कहते हैं वफी सुकूत रिदाई, और चादर गिरने की सूरत में इन नमा लायज मनोइंदा मोहम्मद इन रहमला, इमाम मोहम्मद रहमला के नजदीक वो चादर वाला जामिन नहीं होगा। इदा लबिसा मायुल बसु आदतन, जब उसने ऐसी चीज ओढ़ी है, ऐसी चीज ऐसी चादर पहनी है जिसको आदतन पहना जाता है, जैसे आदत में आम लोग कपड़े और चादर वगैरह पहनते हैं, अगर ऐसी चादर थी तो ये अगर किसी पर गिरी और वो हलाक हो गया तो इस सूरत में जमान नहीं है। अम्मा इन लबिसा मा ला युलबसु आदतन, और अगर उसने ऐसी चादर पहनी जो आदतन नहीं पहनी जाती, का जवालिकिल कलंदरीन, कलंदरीन दो या है नून के साथ, हां एक या होनी चाहिए। जवालिक कहते हैं बोरियां भाई, बोरियां, बोरी जिसके अंदर भाई गंदम वगैरह और चावल रखे जाते हैं। कलंदर, कलंदर आजाद आदमी, बाज आजाद लोग होते हैं, आजाद घूमने फिरने वाले होते हैं, घर बार बच्चों वगैरह का कोई बोझ नहीं होता और अपने लिबास वगैरह की कोई परवाह नहीं होती, कैसा लिबास है कैसा नहीं है उनको कोई फिक्र नहीं होती, बोरियां वगैरह और इस जैसी चीजें उन्होंने अपने ऊपर डाली होती हैं, तो वो क्या है, वो कलंदर, वो आजाद लोग जो हैं वो है कलंदर भाई। तो इसका जवालिकिल कलंदरीना, जैसे कि कलंदरों की बोरियां। अब ये कलंदरों की बोरियां ये तो आम आदमी नहीं पहनता भाई, ये अगर किसी पर गिरी तो फिर वो जामिन होगा। ये इसी तरह है जैसे कोई वजनी चीज उठाई हुई थी और वो किसी पर गिरी है तो जैसे उसमें जमान आता है तो इसमें भी जमान आएगा। अम्मा इन लबिसा माला युल बसु आदतन का जवालिकिल कलंदरीना, बाकी अगर उसने ऐसी चीज पहनी जो आदतन नहीं पहनी जाती, जैसे कि कलंदरों की बोरियां हैं, फसकत अला इंसानी, बस इस जैसी चादर या लिबास जो था वो गिरा किसी इंसान पर, फहलका तो वो हलाक हो गया, यजमनु तो वो जामिन होगा। फहाद अल्लुब सुबी मंजिलतिल हमली, ये पहनना जो है ये बोझ उठाने के दर्जे में है, किसके दर्जे में है, कहते हैं ये बोझ उठाने की तरह है, जैसे कोई शख्स रास्ते में कोई बोझ उठाकर चल रहा था और मसलन बोरी वगैरह सर पर थी और वो बोरी सर से गिरी और नीचे किसी कोई इंसान था बैठा हुआ था या लेटा हुआ था और वो हलाक हो गया उस बोरी की वजह से, तो जैसे वहां पर जमान आता है, जैसे वहां पर जमान आता है तो यहां पर भी ये जो इसके सामान जो इसने लिबास पहना हुआ है, और वो आम लोग ऐसा लिबास नहीं पहनते, बेइंतहा वजनी लिबास है और वो किसी पर गिरा और उसकी वजह से कोई इंसान हलाक हुआ तो उस पर भी जमान आएगा। बात समझ में आ गई। मसलन वो बोरियां वाला लिबास था, वही सूरत बना लें, किसी शख्स ने पहना हुआ था और वो उससे गिरा और नीचे कोई बच्चा जा रहा था, उस बेचारे की गर्दन पर लगा और उसकी गर्दन टूट गई, या वो बच्चा उस सर बच्चे के ऊपर गिरा और वो बच्चा नीचे उसकी वजह से फिर गिरा और सर उसका जमीन पर लगा और फिर वो हलाक हो गया, तो ये उसी की तरह हो गया। बात समझ में आ गई। ये माना है फहाज अल लुब्सु बि मंजिलतिल हमली, कि ये पहनना किसके दर्जे में है, हमल यानी बोझ उठाने के दर्जे में, कोई वजनी चीज उठाने के दर्जे में है। वफिल हमली यजमनु, और हमल की सूरत में तो जमान आता है तो इसमें भी जमान आएगा भाई। वरबुहा इतिन माल इला तरीकिल आम्मती, सूरत मसाला ये, एक शख्स जो दीवार वाला है उसकी दीवार रास्ते की तरफ झुक गई, गिरने का खतरा है, गिरने का खतरा है, अब इस दीवार की वजह से कोई हलाक हो गया तो उस पर जमान नहीं आएगा, इल्ला ये कि किसी ने रास्ते वालों में से किसी ने जाकर उससे मुतालबा किया हो कि भाई आपकी दीवार गिरने वाली है, कोई किसी को नुकसान न पहुंच जाए, आप इस दीवार को सीधा करवा लें। जब मुतालबा हो चुका और फिर इतना वक्त भी बीच में गुजर गया जिसमें दीवार गिराकर फिर सीधी की जा सकती थी, दो चार दिन गुजर गए, और फिर दीवार गिरी और किसी को नुकसान पहुंचा, तो भाई इसके पास तो इतना वक्त था, इससे मुतालबा भी हो गया था कि दीवार सीधी कर दें, इसको खबर दे दी गई थी कि आपकी दीवार टेढ़ी हो गई है, और इसके पास इतना वक्त भी था जिसमें यह दीवार सीधी करवा सकता था और इसने फिर भी दीवार सीधी नहीं की। अब अगर दीवार गिरी और किसी को नुकसान पहुंचा तो इस पर जमान आएगा, चाहे यह मुतालबा करने वाला मुसलमान हो चाहे जिम्मी हो, क्योंकि आम रास्ता है उस पर जैसे मुसलमान के गुजरने का हक है, जिम्मी के भी गुजरने का हक है, लेकिन यह जरूरी है कि वो इस दीवार के सीधा करने का मुतालबा उस शख्स से करे जो उस दीवार को सीधा करवाने का मालिक भी हो, जिसको यह हक हो कि इसको गिराए और फिर सीधा कर दे। तो कहते हैं वर रब्बु हाइतिन, रब्बुल हाइत दीवार का मालिक जो है, दीवार वाला, वरब्बु हाइतिन मालईला तरीकिल आम्मती, और ऐसी दीवार का मालिक, देखा हाइत नकेरा है और उसके बाद माल फेल आया तो मौसूफ सिफत वाला तर्जमा करेंगे, और ऐसी दीवार का मालिक जो कि झुक गई है इला तरीकिल आम्मती आम लोगों की रास्ते की तरफ, व तलबा नक्ज़हू मुस्लिमुन औ ज़िम्मीयुन, और मुतालबा किया इसको गिराने का किसी मुसलमान या किसी जिम्मी ने, मिम्मन यमलिकु नक्ज़हू उस शख्स से मुतालबा किया जो मालिक है इसको गिराने का, जो गिरा भी सकता है, किराएदार से मुतालबा करता है जो उस घर में रहता है, भाई किराएदार तो किस घर की दीवार को गिराने का हक उसको नहीं है भाई, तो मालिक से क्या करता है मुतालबा, फिर मुतबर है, बात समझ में आ गई। यह माना है मिम मैं यम लिकु नक्ज़हू, इसका ताल्लुक तलब से है कि वो मुतालबा करता है गिराने का किससे, मिम मैं यम लिकु नक्ज़हू जो मालिक है उसको गिराने का, कर राहिनी जैसे कि राहिन, भाई राहिन जिसने रहन रखवाया है वो तो रहन का मालिक है भाई, एक आदमी ने दूसरे के पास अपना घर रहन रखवाया है, ये तो एक है मुर्तहिन जिसके पास घर रहन रखवाया, और एक है राहिन जिसने घर रखवाया है जो घर का मालिक है, तो देन के बदले इसने घर रहन रखवाया, और इस राहिन को आकर लोगों ने बताया कि आपने वो जो घर बतौर रहन के रखवाया था उसकी दीवार रास्ते की तरफ झुक गई है, आप उसको सीधा करवा दें, तो ये राहिन ये मालिक है उसको गिराकर सीधा कर सकता है, भाई इस वक्त वैसे तो नहीं कर सकता क्योंकि घर उसने किसके कब्जे में दिया हुआ है, मुर्तहिन के कब्जे में, लेकिन फिर भी देन को अदा करके ये घर छुड़वा ले और दीवार को सीधा कर दे, कर सकता या नहीं कर सकता, ये माना है कि वो उस घर को गिराने का भी मालिक हो। कर राहिनी बिफक की रहनी, जैसे कि राहिन जो है बिफक की रहनी, फक उनका माना छुड़वाना, अपने रहन को छुड़वाने के जरिए, फैन नहु यम लिकु नक्ज़हू बिफक की रहनी, इसलिए क्योंकि वो मालिक है उस दीवार को गिराने का, बिफक की रहनी अपने रहन छुड़ाने के जरिए। वह अबी तिफली, आपकी किताबों में अबू तिफल होगा, हाँ ये गलत है भाई, नीचे लिखा भी हुआ है अत्फुन अला रब्बु हाइतिन लिखा हुआ है भाई, ये किताबत की गलती भाई, ये गलत लिखा है। वह अबू तिफली, ये अबू तिफल नहीं है बल अबी तिफली, इसका आतफ राहिन पर है, कर राहिनी, बात समझ में आ रही है भाई, कर राहिनी भाई, देखिए ये अबू तिफल और जो जितने भी लफ्ज आगे आ रहे हैं इनका आतफ रब्बु हाइत पर नहीं है बल्कि राहिन पर है, और राहिन पर तो काफ जार्रा दाखिल है तो ये वो मजरूर है, तो ये सारे भी क्या होंगे, मजरूर होंगे भाई। देखो इधर देखो, रब्बे हाइत तो मुतलकन शुरू में बता दिया, रब्बु हाइत का क्या माना, दीवार वाला, दीवार का जो मालिक है, दीवार का जो मालिक है जिसकी दीवार रास्ते की तरफ झुक गई, जब मुसलमान और जिम्मी ने किसी ने जाकर मुतालबा कर दिया, किससे मुतालबा किया, जो उसको जो मालिक है उसको गिराने का, जो उसको गिरा सकता है, तो फिर इस सूरत में उस पर जमान आएगा। अब जो मालिक है, कौन कौन मालिक है उसकी किस्में बयान कर रहे हैं, मसलन राहिन है, अबू तिफल बच्चे का बाप, एक बच्चे का मकान है किसी ने उसके नाम कर दिया, बच्चा छोटा था, वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद ये मकान इस बच्चे का है, बच्चे की वरासत का निगरान कौन है, उसका बाप है भाई, बच्चे का माल है लेकिन अभी तो बाप के हाथ में है, तो ये अबू तिफल, देखो बच्चे का जो बाप है ये मालिक है उस दीवार को गिराने का। इसी तरह आगे आ रहा है वल वसी, और जैसे वसी है बच्चे का सरपरस्त, बाप मर चुका है, अब जो भी सरपरस्त है उस यतीम का, वो बच्चे की जायदाद की इसलाह का जिम्मेदार है, तो दीवार गिरने वाली है तो वो सरपरस्त गिरास कर उसको सीधा कर सकता है। वल मुकातबी, इसी तरह मुकातब है भाई, एक आदमी ने अपने गुलाम से कहा कि 3 साल में मुझे 20 लाख रुपए अदा कर दो तो तुम आजाद हो। इस मुकातब ने अब तिजारत शुरू कर दी, इसने एक मकान खरीदा और उस मकान की दीवार झुकी हुई है, तो ये मुकातब मालिक है भाई, ये दीवार को सीधा कर सकता है, लिहाजा इससे मुतालबा किया जाएगा तो, और ये ठीक ना करे तो इस पर जमान आएगा। इसी तरह वल अब्द ताजिरी, ताजिर गुलाम, ताजिर गुलाम जो जिसको आका ने तिजारत की इजाजत दी है, वो भी खरीदो फरोख्त करता है, चीजें खरीदता है और बेचता है, तो इस अब्द, ये अब्द ताजिर भी मुकातब की तरह है, इसने कोई मकान खरीदा है तो इसको हक है उसकी दीवार गिराकर सीधी कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो इन सब का आतफ किस पर है? राहिन पर है। ये मिसालें हैं उन अफराद की जो दीवार को गिराने के मालिक हैं, वो ये अफराद हैं भाई। जैसे वह अबित तिफली, जैसे बच्चे का बाप है, वल वसी और जैसे बच्चे का सरपरस्त है, वल मुकातबी और जैसे मुकातब है, वल अब्द ताजिरी और जैसे ताजिर गुलाम है। फलम यनकुस फी मुद्दतिन तुम किनु नक्ज़हू ज़मीना मालन तलिफ बिही व आकिलतुहु नफ्सा। फलम यनकुस फी मुद्दतिन, उन्होंने मुतालबा कर दिया, फलम यनकुस फी मुद्दतिन, बस नहीं गिराया उस दीवार वाले ने, फी मुद्दतिन, मुद्दतिन नकेरा आया, आगे तुम किनु फेल आया, बस उसने नहीं गिराया इतनी मुद्दत में कि तुम किनु नक्ज़हू, कि मुमकिन था इसके लिए उसको गिराना, मुमकिन था इसके लिए गिराना, बल्कि लफ्जी तर्जमा करें इतनी मुद्दत में, नकिरा के बाद फेल आए तो उसकी सिफत बनता है, हम क्या तर्जमा करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी, यह अमूमन अक्सर जगह तर्जमा ठीक हो जाता है, लेकिन यहां ऐसी के बजाय इतनी कहें, इतनी मुद्दत, फी मुद्दतिन, इतनी मुद्दत तुम किनो नक्ज़हू, जो उसको कादिर बना देती है उसके तोड़ने पर, इतनी मुद्दत जो उसको कादिर बना दे उस दीवार के तोड़ने पर, तो कहते हैं फलम यनकुस फी मुद्दतिन तुम किनु नक्ज़हू, बस उसने दीवार को नहीं गिराया इतनी मुद्दत में कि जिसने उसको कुदरत दे दी थी इसके गिराने की, ज़मीना मालन, तो इस सूरत में यह शख्स ज़ामिन होगा, क्या होगा, ज़ामिन, जामीन होगा, मालन ऐसे माल का, तलिफा बिही जो इसकी वजह से तलफ हो गया, जो हलाक हो गया, इस दीवार के नीचे जो माल हलाक हुआ ये शख्स उस माल का जामीन होगा। वह आकिलतुहु और इस शख्स की आकिला जामीन होगी, अन नफ्सा जान की, इस दीवार के गिरने से अगर कोई जान जाया हुई तो जान की सूरत में तो दियत आती है और दियत खता किस पर आती है, आकिला पर, तो यहां पर यह सबब बन गया तो यह कत्ल भी सबब हुआ लिहाजा आकिला पर दियत आएगी, और अगर किसी का माली नुकसान हुआ, किसी का जानवर उसके नीचे आ गया या कोई चीज आकर टूट गई खराब हुई, तो इस सूरत में यह माल का जमान है और माल का जमान आकिला पर नहीं आता बल्कि उसको खुद उठाना पड़ता है। यह माना है जमीना मालन तलिफा बिही, वो शख्स उस माल का जामिन होगा जो इसकी वजह, जो इसके गिरने की वजह से हलाक हो गया। वह आकिलतुहु नफ्सा और इस शख्स की आकिला जामिन होगी नफ्स की। वह सूरतु तलबी, अच्छा भाई तलब कैसे करेंगे, मुतालबा कैसे करेंगे उससे जाकर, वो बयान करने लगे हैं, कहते हैं वह सूरतु तलबी अय्यकूला, तलब की सूरत यह है कि यूं कहे उससे, इन हाइता का हादा माइलुन फहदिम हो, इन हाइता का हादा, आपकी ये जो दीवार है माइलुन ये झुक गई है, फहदिम हो तो इसको गिरा दीजिए, आपकी ये दीवार झुक गई है तो इसको गिरा दीजिए, इस तरह मुतालबा उससे जाकर करना है। वह सूरतुल इशहादी, अच्छा याद रखो मुतालबा भी किया जाता है और मुतालबे पर गवाह भी बनाए जाते हैं भाई, ताकि कल कहीं ये काजी के सामने इनकार ना करे कि काजी साहब मुझे तो किसी ने नहीं बताया था, किसने मुझे बताया ही नहीं कि मेरी दीवार टेढ़ी हो गई है, अब मुझे पता ही नहीं चला, तो लिहाजा क्या करे, गवाह बना ले, गवाह बना ले दो आदमियों को, और उसका भी तरीका बतलाने लगे हैं, कहते हैं वह सूरतुल इशहादी और गवाह बनाने की सूरत यह है, अन यकूला कि यूं कहे, अशहीदू अन्नी तकद्दमतु इला हादर रजुली लिहदमी हाइतिही, अशहीदू तुम लोग गवाह बन जाओ, तुम लोग गवाह रहो, एक है शहीदा यशहदू, उससे अमर आएगा इशहदू इशहदू, तो ये शहीदा यशहदू से नहीं है, अशहादा युशहिदू गवाह बनाना है। एक है गवाही देना, इशहदू का माना है तुम गवाही दो, और अशहीदू का क्या माना, बाबे इफ़ाल है, तुम गवाह बन जाओ। तो यूं कहे गवाह बनाते वक्त, यूं कहे अशहीदू तुम लोग गवाह बन जाओ, अन्नी तकद्दम तु इला हाजर रजुली। तकद्दम का एक माना है मुतालबा करना, तकद्दम का एक माना क्या, तकद्दम का
बताना
एक माना है आना, किसी के पास आना, और इसी तरह इसका एक माना है किसी के पास जाकर मुतालबा करना। तो यहां ये मुतालबे के माने में है कि अशहीदू तुम लोग गवाह बन जाओ, अन्नी तकद्दम तु इला हादर रजुली, मैंने मुतालबा कर दिया है इस आदमी से, लिहद मिहा इति ही, इसकी दीवार गिराने का, मैंने इस आदमी से इसकी दीवार गिराने का मुतालबा कर
मुतालबा
दिया है। वालम जान ले तू, अन्नहु जुकिरा फिल कुतुबी तलबु वल इशहादु, के जिक्र किया गया है किताबों के अंदर तलब को भी और इशहाद को भी, और इशहाद को भी, कि तलब भी करे और इशहाद भी
इशाद
करे, गवाह भी बनाए।
बने।
लेकिन अल इशहाद लैसा बिशर्तिन, लेकिन गवाह बनाना शर्त नहीं है, जरूरी नहीं है। वही नमा दुकिरा लिया था मक्कना मिन इस बात ही इंदल इनकारी, और इसको जिक्र किया गया सिर्फ इसलिए ताकि ये शख्स कादिर हो मिन इस बात ही, कि वो क्या करे इस तलब को साबित भी
साबित
कर
कर
सके, इंदल इनकारी, जब वो शख्स इसका इनकार करे। फकाना मिन बाबिल एहतियाती, तो ये गवाह बनाना जो है ये एहतियात के बाब से है, इन एहतियात इसमें है कि क्या कर ले, इस तलब पर गवाह बना ले, लाजमी नहीं है। बात समझ में आ गई।
जी।
लामन अशहदा अलैहि फबाअ वकबज़हुल मुश्तरी फसकता। सूरत मसला ये, एक शख्स की दीवार रास्ते की तरफ झुक गई थी, दूसरे शख्स ने जाकर उससे मुतालबा किया और उस पर गवाह भी बना लिए, लेकिन उस शख्स ने वो दीवार सीधी नहीं की, बल्कि उसने इस मकान को बेचा और मुश्तरी के हवाले किया और चला गया, मुश्तरी ने उस पर कब्जा कर लिया, तो इस सूरत में उस पर जमान नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। क्यों नहीं आएगा जमान, कहते हैं इसलिए क्योंकि उससे बेशक मुतालबा हुआ था, लेकिन अब वो इस घर का मालिक नहीं है जब नुकसान हुआ, और जब नुकसान हुआ तो मालिक कौन है, मुश्तरी, और मुश्तरी से तो आपने मुतालबा नहीं किया, उससे भी क्या करना चाहिए था, मुतालबा करना चाहिए था। यह माना है ला के जामिन नहीं होगा मन उशहिदा अलैहि, कि वो शख्स जिस पर गवाह बनाए गए, फबा फिर उसने वो घर बेच दिया, वकबज़हुल मुश्तरी और उस पर मुश्तरी ने कब्जा कर लिया, फसाकता फिर वो दीवार गिर गई, तो वो बेचने वाला जामीन नहीं होगा और न मुश्तरी, क्योंकि उससे मुतालबा नहीं हुआ। औ तलब मिम्मन ला यमलिकु नक्ज़हु, या तलब तो की लेकिन मिम्मन ला यमलिकु नक्ज़हु, उस शख्स से की जो मालिक नहीं है उस दीवार को गिराने का। कल मुर्तहिनी, जैसे कि मुर्तहिन जिसके पास रहन रखवाया गया, भाई जो घर जिसके पास रखवाया है वो तो इस घर का मालिक नहीं, वो इस घर की दीवार नहीं गिरा सकता। वल मुस्ताजिरी, और वो जो किराए पर लेने वाला है, कोई किराएदार इस घर में रहते हैं, आपने उनसे जाकर मुतालबा कर दिया, भाई वो तो इस दीवार को गिराने के मालिक नहीं है, लिहाजा उनसे मुतालबा नहीं होगा बल्कि मालिक से मुतालबा होगा। वल मुदई, मुदा वो शख्स जिसके पास कोई चीज बतौर अमानत के रखवाई जाए, जैद ने अपना घर बकर के पास बतौर अमानत के रखवाया था, तो बकर जो है वो अमीन है और उस घर की दीवार झुक गई, किसी ने जाकर बकर से मुतालबा कर दिया, भाई बकर बकर तो मुदा है, अमीन है, वो तो इस दीवार को गिराने का मालिक नहीं है, वो तो नहीं गिरा सकता, मुतालबा किससे करना चाहिए, मालिक से, मालिक से। ये माना है औ तलब मिम्मन ला यमलिकु नक्ज़हु, या तलब की उस शख्स से जो मालिक नहीं है उस दीवार को गिराने का। कल मुर्तहिनी वल मुस्ताजिरी वल मुदई, जैसे कि मुर्तहिन है और किराए पर लेने वाला है, वल मुदई और वो जिसके पास अमानत रखवाई जाए, वसाकिनी दारी और उस घर में रहने वाला। जैद ने अपना घर वैसे बकर को दिया हुआ था कि इस घर में आप कुछ अरसा रहें, मेरा घर है, तो अब मुतालबा बकर से नहीं होगा, बकर तो वैसे रहने वाला है उस घर में, बल्कि मुतालबा किससे होगा, मालिक से होगा, भाई। यह माना है, और जैसे वसा के निदारी उस घर में रहने वाला है बगैर मिल्कियत के, फइन माल इला दारी रजुलिन फलहु तलबु फयसिहु ताजीलुहु व इबराउहु मिनहा। सूरत मसला यह कि एक शख्स के घर की दीवार पड़ोसी के घर की तरफ झुक गई, तो क्या अब रास्ते वाला कोई भी शख्स मुतालबा कर सकता है कि यह दीवार सीधी करवाओ? क्या उस वो तलब काफी है, उसका एतबार है? कहते हैं नहीं, अब तलब खास तौर पर जिस पड़ोसी के घर की तरफ यह दीवार झुक गई है, गिरने वाली है, उस पड़ोसी का मुतालबा होना चाहिए, और फिर मुतालबे के बाद यह सीधी नहीं करवाता तो इस पर जमान आएगा, वरना जमान नहीं आएगा। यह माना है फइन माला इला दारी रजुलिन, अगर वो दीवार झुक गई किसी आदमी के घर की तरफ, फलहु तलब, तो उसी आदमी के लिए तलब है और किसी के लिए नहीं, यानी तलब का हक उसी आदमी को है। फयसिहु ताजीलुहु व इबराउहु मिनहा, तो सही है उसकी ताजील, उसका मुद्दत देना भी सही, व इबराउहु मिनहा, और उसका उससे बरी करना भी सही है। भाई देखो, जैद के घर की दीवार बकर के घर की तरफ झुक गई, तो मुतालबे का हक भी किसको है? बकर ही को है, किसी और को नहीं, किसी और की तलब उसका कोई एतबार नहीं। और बकर ने इसे तलब कर ली, जैद ने अपना कोई उजर वगैरह जिक्र किया, तो बकर ने कहा चलो ठीक है, आप 4-6 महीने तक ठीक करवा लें, तो यह मुद्दत किसने दे दी? उस वो साहिब हक ने दे दी, लिहाजा इस सूरत में इस मुद्दत के अंदर अगर दीवार गिरी तो वो जामिन नहीं होगा, क्योंकि साहिब हक ने खुद उसको मुद्दत दे दी थी, या वो साहिब हक उसको बरी कर देता है, उसने कहा आपकी दीवार मेरे घर की तरफ झुक गई है, सीधी करवा लें, उसने अपना कोई उजर वगैरह पेश किया कि मेरे पास पैसे नहीं है वगैरह, तो पड़ोसी भी नेक आदमी था, उसने कहा चलो बस ठीक है भाई, छोड़ें ऐसे ही रहने दें इसको, चलने दें इसी तरह, तो देखो उसने उसको बरी कर दिया। तो इस सूरत में भी अगर नुकसान हुआ तो कोई जामिन नहीं होगा, क्योंकि साहिब हक ने खुद क्या कर दिया है? उसको बरी कर दिया, माफ कर दिया है। यह माना है फयसिहु ताजीलुहु, तो सही है उस साहिब हक के लिए मुद्दत मुकर्रर करना भी, व इबराउहु मिनहा, और उसको उससे बरी करना भी सही है। ला इन माल इलत तरीकी फअज्जलहुल काजी औ मन तलब, सूरत ये एक शख्स के घर की दीवार रास्ते की तरफ झुक गई, अब काजी ने उसको मोहलत दे दी कि चलो भाई 6 महीने में सीधी करवा लो, नहीं भाई, आम लोगों के हक में काजी लोगों के हक को बातिल नहीं कर सकता, लिहाजा काजी का मोहलत देना उसका कोई एतबार नहीं। या जिसने मुतालबा किया था कि आपकी दीवार झुक गई है उसे सीधा कर दो, इसने उजर वगैरह पेश किया कि मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है इस वक्त, तो उसने कहा चलें ठीक है 6 महीने तक आप दीवार ठीक करवा लें, कहते हैं नहीं, इस सूरत में भी मुद्दत देना सही नहीं, दीवार जब भी गिरेगी जमान होगा, इसलिए क्योंकि यह आम लोगों का हक है और आम लोगों का हक किसी को बातिल करने का इख्तियार नहीं, तो वो जिसने तलब की थी उसको इख्तियार नहीं है कि लोगों का हक बातिल कर दे और 6 महीने की मुद्दत इसको दे दे। ये माना है ला, हां ला ये पीछे आया ना, फयसिहु सही है उसकी मुद्दत देना भी और बरी करना भी सही, लेकिन इस सूरत में ये मुद्दत देना सही नहीं। इन माल इलत तरीकी, अगर वो दीवार झुक गई रास्ते की तरफ, फअज्जलहुल काजी, तो काजी ने उसको मुद्दत दे दी, मोहलत दे दी, औ मन तलबा, या वो जो शख्स जिसने मुतालबा किया था उसने मोहलत दे दी, तो ये मोहलत देना सही नहीं है। बात समझ में आ गई भाई? ला आया पीछे ला, कि ये मुद्दत देना सही नहीं। लिअन्नहु हक्कुल आम्मति, इसलिए क्योंकि ये आम लोगों का हक है, फला यकूनु लहुमा इब्तालुहु, लिहाजा इन दोनों को हक नहीं है, ये काजी और साहिब मुतालबा को, इनके लिए जायज नहीं है इब्तालहु, कि वो आम लोगों के हक को बातिल कर दें। फइन बना मा इलन इब्तिदाअन जमीना बिला तलबिन, सूरत मसला ये, एक शख्स ने घर की दीवार बनाई और वो शुरू से ही टेढ़ी बनाई, झुकी हुई है, तो इस सूरत में मुतालबा भी नहीं जरूरी भाई, मुतालबा भी नहीं जरूरी, ये दीवार जब भी गिरी किसी का नुकसान हुआ तो जमान आएगा। यह माना है फइन बना मा इलन, अगर तामीर किया दीवार को इस हाल में कि वो झुकी हुई थी, इब्तिदा अन शुरू से ही, जमीना बिला तलबिन, तो वो शख्स जामिन होगा बगैर तलब के ही, कमाफी इशरा उल जनाह व नहवी ही, जैसे कि इशरा उल जनाह और इस जैसी चीजों में, इशरा उल जनाह और इस जैसी चीजों में। इशरा का माना होता है, याद रखें, निकालना, खोलना, किसी चीज एक चीज का एक तरफ को निकालना खोलना, और जनाह कहते हैं बाजू और पर को, बाजू और पर एक तरफ खोलना। खुद माना बयान कर रहे हैं, कहते हैं इशराउल जनाही, इशराउल जनाह जो है इखराजुल जुजुई मीनल जिदारी इलत तरीकी, वो शहतीरों को निकालना है दीवार से इलत तरीकी रास्ते की तरफ, वल बिना अलैहा और उस पर तामीर करना। शहतीरों को दीवार से रास्ते की तरफ निकाल लेना और उन पर तामीर करना, ये क्या है? इशराउल जनाह है भाई, यानी पर खोलना, यानी रास्ते की तरफ इजाफा करना। और इन्होंने क्या कहा था? कमाफी इशराइल जनाही व नहवी, जैसे कि इशराउल जनाह और इस जैसी चीजों में है। भाई इस जैसी चीजें वो क्या हैं? वो भी बयान कर रहे हैं, कहते हैं अम्मा नहवहू और बाकी इसके मिसल चीजें जो हैं, फल कनीफ वल मीजाबू, तो वो बैतुल खला और परनाला हैं, वो भी इसी की तरह है। क्योंकि इन सब में जमान आएगा, इसमें जमान आएगा रास्ते की तरफ जब भी होंगे, और इससे किसी को नुकसान पहुंचता है। भाई इन्होंने आपको बतलाया कि अगर कोई दीवार बनाता है और वो शुरू से ही टेढ़ी है और फिर वो गिरती है बाद में और किसी का नुकसान होता है, तो फिर इस सूरत में वो दीवार बनाने वाला जामिन होगा। यहां तलब भी नहीं जरूरी कि कोई जाकर उसे मुतालबा करे दीवार सीधी करो। वजह इसकी ये कि जब दीवार शुरू में सीधी बनाई मालूम हुआ बनाने वाले की नीयत ठीक थी, बाद में दीवार टेढ़ी हो गई है, उस बेचारे को इलम नहीं होगा, भाई जाकर उसको बताओ ताकि वो दीवार सीधी कर दे ताकि किसी का नुकसान ना हो। लेकिन अगर दीवार शुरू से ही टेढ़ी उसने बनाई है, इसका मतलब है मालूम हुआ वो शुरू से ही उसका इरादा फसाद का है। क्योंकि ये दीवार जब टेढ़ी है तो जाहिर सी बात है किसी वक्त गिरेगी, किसी का नुकसान हो जाएगा, तो मालूम हुआ इसका इरादा शुरू से ही फसाद का है। तो यहां अब तलब भी नहीं जरूरी और वो दीवार से किसी का भी नुकसान होगा तो वो जामिन होगा। और ये इसी तरह है जैसे इशराउल जनाह में, किसके अंदर? इशराउल, जैसे कोई घर से बाहर भाई रास्ते के अंदर तने निकाल लेता है दीवार से बाहर कोई छज्जा वगैरह बनाने के लिए, जैसे उसने दीवार टेढ़ी की थी, दीवार से किसी का खतरा था गिरने का, इसी तरह इसने जो छज्जा बाहर निकाल लिया या बाहर परनाला निकाल लिया या बैतुल खला बाहर बना दिया, तो इनका भी वही हुक्म है। इसमें भी मुतालबे की नहीं जरूरत, इसमें भी किसी का नुकसान होगा तो उस पर जमान आ जाएगा। ये माना है, तर्जमा समझ में आया भाई? फइन दोबारा देखें, फइन मतन सिर्फ देख लें, फइन बना माइलन इब्तिदाअन, अगर शुरू से ही उसने वो दीवार टेढ़ी बनाई है, जमीना तो जामीन होगा, बिला तलबिन बगैर किसी तलब के, मालूम हो शुरू से ही इसकी नीयत खराब थी। कमा फी इशराइल जनाही, जैसे के इशराउल जनाह के अंदर है कि वहां भी तलब जरूरी नहीं, उसने रास्ते के अंदर कोई चीज बनाई है या इजाफा किया है तो उसमें भी तलब जरूरी नहीं, किसी का नुकसान होगा तो उस पर जमान आएगा। कहते हैं हाइतुन बैन खमसतिन तुलिबन नक्जुहू मिन अहदिहिम, सूरत मसला ये कि एक दीवार पांच आदमियों के दरमियान मुश्तरका थी, एक दीवार पांच आदमियों के दरमियान मुश्तरक, मसलन वो घर पांच आदमियों का मुश्तरका है तो वो दीवार भी उन पांचों की मुश्तरका हुई। ये दीवार अब रास्ते की तरफ झुक गई, अब एक आदमी ने इन पांच में से एक शरीक से जाकर मुतालबा किया कि ये दीवार सीधी कर लें, फिर उसके बाद ये दीवार गिरी और वो कोई शख्स इसकी वजह से हलाक हुआ तो जमान आएगा। अब किस पर जमान आएगा? कहते हैं कि चार से तो मुतालबा हुआ ही नहीं, लिहाजा उन पर तो जमान नहीं आएगा। एक आदमी से मुतालबा हुआ है और उसके बावजूद उसने दीवार सीधी नहीं की तो उस पर जमान आएगा, लेकिन उसके हिस्से के बकदर। और इस दीवार में उसका कितना हिस्सा? पांचवां हिस्सा, तो पांचवां हिस्सा दियत का उसकी आकिला पर आ जाएगा। कहते हैं हा इतुन बैन खम सतिन, एक दीवार थी जो मुश्तरक थी पांच आदमियों के दरमियान, तुलिबा नक्जुहू मिन अहदिहिम, तो मुतालबा किया गया इसको गिराने का, मिन अहदिहिम इनमें से किसी एक से, वसकत अला रजुलिन और फिर वो दीवार किसी शख्स पर गिर गई, जमीन अल आकिला तो खुमुसदियती, तो जामिन होगी उस शख्स की आकिला खुमुसदियत, दियत के پانچویں حصے کا. کما زمینو سلو سیحا ان حفر احد سلاستین. اچھا صورت مسئلہ یہ, ایک زمین تین آدمیوں میں مشترکہ تھی, تین آدمیوں میں مشترکہ تھی. اس زمین کے اندر کسی نے کوئی دیوار بنا ڈالی, ان شریکوں میں سے ایک نے, یا اس نے کنواں کھود لیا, اس کنویں کے اندر کوئی گر کر مرا, یا اس دیوار کے نیچے آ کر کوئی مر گیا, دیوار گر گئی. یہ سارے شریکوں نے تو نہیں بنائی نا, ایک نے بنائی ہے, ایک نے. تو وہ جو شریک ہے جس نے یہ کنواں کھودا ہے یا دیوار بنائی تھی, اس کی عاقلہ ضامن ہوگی دو سلس دیت کی. توجہ ہے, دو سلس دیت کے زمان آئے گا ان پر. بھائی کیوں دو سلس کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ زمین تین آدمیوں میں مشترکہ تھی, تین آدمیوں میں مشترکہ تھی. اس نے جب اس میں کنواں کھودا تو ایک سلس تو اس کا اپنا ہے اور دو سلس دوسروں کا ہے, اور ان سے اس نے اجازت نہیں لی, تو دو سلس میں اس نے تعدی کی ہے. یہ دیوار بنائی تو ایک سلس تو اس کا اپنا اور دو سلس دو آدمیوں کا, تو دو سلس میں اس نے تعدی کی ہے. تو جتنی تعدی کی ہے اتنا زمان آئے گا, تو ایک سلس کا زمان نہیں آئے گا کیونکہ اپنی زمین میں کھدائی کر رہا ہے یا اپنی زمین میں دیوار بنا رہا ہے. ہاں اگر ایک آدمی نے اپنی زمین کے اندر کنواں کھودا یا دیوار بنائی اور پھر اس زمین کے اندر کوئی آیا اور ہلاک ہوا, پھر زمان نہیں ہے, اس نے کوئی تعدی نہیں کی. بھائی یہاں ہے کہ دو کی اجازت کے بغیر تیسرے نے یہ کام کیا ہے تو اس نے دو سلس کیا کی ہے, تعدی کی ہے, تو تعدی کے بقدر اس پر زمان آئے گا, اس کی عاقلہ پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کما زمینو, جیسے کہ عاقلہ ضامن ہوں گے سلسیہا, دیت کے دو سلس کے, دیت کے دو سلس کے ضامن ہوں گے عاقلہ والے. ان حفر احد سلاستین, اگر کھودا تین میں سے ایک نے, فی دارہم ان کے گھر میں, بئرن کوئی کنواں, او بنا حائطن یا کوئی دیوار بنائی. ایک ان تین میں سے ایک نے کوئی کنواں کھودا. ان حفر احد سلاستین فی دارہم بئرن او بنا حائطن, اگر ان تین میں سے کسی ایک نے ان کے اس گھر کے اندر کوئی کنواں کھودا یا کوئی دیوار بنائی. ای زمین عاقلہ من طلب منہ النقض خمس دیتی, یعنی ضامن ہوگی عاقلہ من, اس شخص کی عاقلہ, طلب منہ النقض جس سے دیوار گرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا, خمس دیتی, کتنی دیت کیا؟ پانچواں. دو مسئلے اکٹھے ذکر ہوئے نا, ایک خمس والا ذکر ہوا, ایک سلسین والا. تو خمس دیت کے وہ ضامن ہوں گے. لأن طلب صح فی الخمس, اس لیے کیونکہ یہ طلب صحیح تھی, فی الخمس پانچویں حصے میں, پانچوں سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا لیکن ایک میں کیا, تو لہذا خمس آئے گا اس پر. وزمین عاقلۃ حافر البئر وبان الحائط ثلثی دیتی, اور ضامن ہوگی عاقلہ کنواں کھودنے والے کی اور دیوار بنانے والے کی, ثلثی دیتی, کتنی دیت کا؟ دو سلس دیت کا وہ ضامن ہوں گے اس کے عاقلہ. لأن الحافر والبانی فی الثلثین متعدین, اس لیے کیونکہ وہ جو کھودنے والا ہے یا وہ جو دیوار بنانے والا ہے وہ فی الثلثین دو سلس میں متعدین, تعدی کرنے والا ہے, زیادتی کرنے والا ہے, ظلم کرنے والا ہے دو سلس میں. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ, یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں مسئلوں میں آدھی آدھی دیت آئے گی. امام صاحب نے تو فرمایا ایک صورت میں پانچ شریک تھے تو پانچواں حصہ دیت آئے گی, ایک صورت میں تین شریک تھے تو دو سلس دیت آئے گی. صاحبین فرماتے ہیں نہیں, آدھی دیت آئے گی اور آدھی نہیں, اس لیے کیونکہ یہاں دو قسم کی چیزیں آ گئیں, ایک کچھ لوگ وہ جن سے مطالبہ ہوا اور کچھ لوگ وہ جن سے مطالبہ نہیں ہوا, یعنی پہلی پانچ والی صورت میں. تو گویا دو گروہ بن گئے لوگوں کے, ایک گروہ میں جس سے مطالبہ ہوا اور دوسرے گروہ میں جن سے مطالبہ نہیں ہوا, لہذا یہ جو دیت ہے اس کے بھی دو حصے ہو جائیں گے, ایک حصہ جو ہے زمان آ جائے گا. سمجھ میں ہے؟ جس سے مطالبہ ہو گیا تھا اور پھر بھی اس نے نہیں بنائی تو اس کا حصہ نصف ہو جائے گا, اس پر نصف دیت آئے گی. دیکھیے بھائی تقریر صاحبین کی, کہتے ہیں وقالا, صاحبین فرماتے ہیں زمینو وہ عاقلہ ضامن ہوں گے, النصف آدھے کے, فی الحائط دیوار میں بھی, والحفر والبنائی اور खोदने, कुआं खोदने में भी, ओवल बिनाई और दीवार तामीर करने में भी, अम्मा फिलहाइती, तो दीवार के अंदर जो है, जो पहली सूरत थी जिसमें पांच शरीक थे, एक से मुतालबा किया था, कहते हैं अम्मा फिलहाइती, तो दीवार जो है उसके अंदर, फली अन्न तलफ बि नसीब मन तुलिब मिन्हु मुतबरुन, इसमें हलाक होना बि नसीब मन, उस शख्स के हिस्से की वजह से, तुलिब मिन्हु जिसे मुतालबा किया गया था, मुतबरुन वो हलाकत मुतबर है, उसकी वजह से जमान आएगा। वफी नसीबी गैरी ही ला, और बाकियों के हिस्से के अंदर तलफ मुतबर नहीं, क्योंकि उनसे तो मुतालबा ही नहीं किया गया। फकान किस्मैनी, तो गोया ये तलफ दो किस्म पर हो गई। बात समझ में आ गई, तलफ दो किस्म की हो गई, एक वो तलफ जो मुतबर है, एक वो तलफ जो मुतबर नहीं। कौन सी मुतबर है? जिससे मुतालबा किया था, और बाकी चार से तो मुतालबा नहीं किया, वो मुतबर नहीं। तो तलफ के दो किस्में बन गई, पांच किस्में ना, पांच हिस्से ना बनाओ, बल्कि दो किस्में बना दो। एक वो तलफ जो मुतबर है उसमें जमान आएगा, एक वो तलफ जो मुतबर नहीं उसमें जमान नहीं आएगा। ये माना है फकान किस्मैनी, तो तलफ जो है यानी चीज की हलाकत वो दो किस्म पर हो गई। कमाफी अकरिल असदी व नहशिल हय्यती व जरहिल इंसानी, आकर कहते हैं दरिंदे का किसी को काटना, कमाफी अकरिल असदी जैसे शेर को काटने की सूरत में, व नहशिल हय्यती, हय्यतुन कहते हैं सांप को, और नहश का माना है सांप का किसी को डसना, व नहशिल हय्यती और जैसे सांप का डसना, व जरहिल इंसानी और जैसे किसी इंसान का दूसरे को जख्मी करना। भाई एक आदमी है, एक आदमी है, ये मसला पीछे गुजर चुका है, उसको दरिंदे ने भी जख्मी किया, शेर ने भी जख्मी किया, फिर सांप ने भी उसको काटा, फिर एक इंसान ने उसको कत्ल भी किया। तो अब बजाहिर तीन फेल हैं, तीन हिस्से होने चाहिए दियत के, लेकिन तीन नहीं, तो यहां दो का एतबार किया जाता है, क्योंकि सांप और दरिंदे का फेल उसका तो जमान कोई नहीं, लिहाजा वो एक किस्म हुआ, और इंसान का फेल जमान वाला है वो दूसरी किस्म का हुआ, तो उस पर आधी दियत आएगी, हालांकि सुलुस आनी चाहिए लेकिन आधी आएगी, क्योंकि फेल की दो किस्में हैं भाई, एक हदर है रायगां है और एक रायगां नहीं है भाई। तो यहां भी साहिबैन फरमाते हैं इसी तरह तलफ की दो किस्में हो जाएंगी, एक जो जिसका एतबार नहीं और एक वो जिसका एतबार है। वफी मसअलतिल हफ्र वल बिनाई, और दूसरी सूरत क्या थी जिसमें तीन शरीक थे और उसने कुआं खोदा था या कोई दीवार बनाई थी, उसके अंदर इमाम साहब क्या फरमाते हैं? दो सुलुस दियत आएंगे उसके आकिला पर। साहिबैन यहां भी फरमाते हैं नहीं, निसफ आएगी दियत उसके ऊपर, दो सुलुस नहीं, उसकी अब वजह जिक्र कर रहे हैं। वफी मसअलतिल हफ्र वल बिनाई, और कुआं खोदने और दीवार तामीर करने के मसले में, फली अन्न तलफ बि नसीबिल मालिक ला युजिबु जमाना, इसलिए क्योंकि हलाक होना बि नसीबिल मालिक, मालिक के हिस्से की वजह से, ला युजिबु जमाना, यह जमान को वाजिब नहीं करता। भाई जिसने कुआं खोदा था वो भी तो मालिक था, शरीक था ना, लेकिन उसने एक हिस्से का मालिक था, दो हिस्सों का मालिक नहीं था। तो इमाम साहब ने फरमाया कि दो हिस्सों में इसने तादी की है, इसलिए इस पर दो सुलूस जमान आएगा, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, दीवार के दो हिस्से समझेंगे, दो हिस्से समझेंगे बई एतबार कि इस शख्स ने जब कुआं खोदा या दीवार बनाई, एक एतबार से देखें तो ये मालिक है, इसको बनाने की इजाजत है, और दूसरे एतबार से देखें तो इसमें तो दूसरे भी शरीक हैं, उनकी इजाजत जरूरी है, तो उनकी इजाजत के बगैर गोया इसने गसब किया है। क्या किया है? गसब। तो यहां गोया दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा मालिक के एतबार से उसी आदमी का, और एक हिस्सा गासिब के एतबार से है। तो लिहाजा मालिक के एतबार से जो हिस्सा है उस एतबार से तो जमान नहीं आना चाहिए, और गासिब के एतबार से जो हिस्सा है उसके एतबार से जमान आएगा, तो वो आधा आएगा, क्योंकि बात समझ में आ गए, दो किस्म के हिस्से हो गए। ये माना है फली अन्न तलफ बी नसीबिल मालिक ला युजीबु जमाना, इसलिए क्योंकि हलाक होना मालिक के हिस्से की वजह से ये जमान को वाजिब नहीं करता। वह बी नसीबिल गासिबी युजीबु, और गासिब के हिस्से की वजह से जमान को वाजिब करता है, ये तलफ जो है जमान को वाजिब करता है। फयुक्समु किस्मैनी, तो इसको तकसीम किया जाएगा दो किस्मों में, दो किस्में बना ली जाएंगी, एक तलफ गासिब के एतबार से और एक तलफ मालिक के एतबार से, और मालिक के एतबार से तलफ का एतबार नहीं क्योंकि वो मालिक है, इस एतबार से उसने दीवार बनाई है, और गासिब के एतबार से जमान आएगा क्योंकि उसने गसब के एतबार से दीवार बनाई है। बात समझ में आ गई। बाबू जिनायतिल बहीमती व अलैहा, ये बाब है, बहीमा कहते हैं जानवर और मवेशी, चौपाए भाई चौपाए। बाबू जिनायतिल बहीमती व अलैहा, अलैहा यहा जमीर भी बहीमा को राजे है। बाबू जिनायतिल बहीमती व अलल बहीमती, ये बाब है बहीमे यानी चौपाए और मवेशी की जिनायत के बयान में। व अलैहा, और ये बाब है बहीमे पर जो जिनायत की जाए उसके बयान में। जानवर भाई किसी को नुकसान पहुंचा दे या कोई किसी के जानवर को नुकसान पहुंचा दे तो उसके बयान में है। तो बाब जिनायतिल बहीमति व अलैहा, ये बाब है बहीमे की जिनायत के बयान में और बहीमे पर यानी बहीमे के खिलाफ जिनायत के बयान में। जमीन राकिबु मा वतिअत दाबतुहु औ मा असाबत बियदिहा औ रिजलिहा औ रअसिहा औ कदमत औ खबतत औ सदमत ला मा नफहत बिरिजलिहा औ ज़नबिहा। कोई शख्स घोड़े खच्चर या ऊंट वगैरह पर सवारी करता है और वो जो जानवर है वो राह चलते किसी को कोई नुकसान दे देता है तो इस सूरत में यह सवार जामिन होगा। बात समझ में आ गई। यह माना है जमीनर राह की बुके सवारी करने वाला वो जामिन होगा मां उस चीज का। वती अदाबतु, जिसको उसके दाब्बा ने इसके सवारी के जानवर ने रौंद डाला, जिस चीज को इसके सवारी के जानवर ने रौंद डाला ये उसका जामिन होगा, इस पर जमान आएगा। तो वतीआ का क्या माना है? पांव के नीचे किसी चीज को रौंदना, उस जानवर ने उस पर पांव रख दिया। और मा असाबत भी ये दिहा, या वो जिसको उसका हाथ लगा। भाई याद रखो, हैवान के घोड़े गधे बैल वगैरह चार पांव हैं इनके, और इनमें से जो अगले दो पांव हैं उनको यद कहा जाता है, यद, और पिछले दो पांव जो हैं उनको रिजल कहा जाता है। जैसे इंसान के हाथ और पांव हैं तो इसी तरह इनके भी जो अगले पांव हैं उनको यद कहा जाता है और इनके जो पिछले दो पांव हैं उनको रिजल। तो लिहाजा जब भी यहां यद जिक्र होगा मुराद अगला पांव होगा, और जब भी रिजल जिक्र होगा तो पिछला पांव मुराद होगा। यह माना है औ मा असाबत भी यदिहा और रिजलिहा, या जिसको वो जा लगे अपने हाथ के साथ और रिजलिहा या अपने पांव के साथ, यानी किसी चीज को उसका हाथ लग गया, अगला पांव लग गया, और रिजलिहा या इसका पिछला पांव लगा, और रअसिहा या किसी चीज को उसका सर लगा, और कदमत, कदमा यकदिमु के माने हैं किसी चीज को मुंह से काटना, या उस हैवान ने किसी चीज को मुंह से काट लिया भाई। और खबतत, खबता यकबितु के माने है अगला पांव किसी चीज को मारना। तवज्जो है, खबता यखबितु का माना हैवान का अगला पांव किसी को मारना, और आगे आ रहा है नफाहत, नफाहा या अनफाहु का माना पिछला पांव किसी को मारना। तो सारी सूरतें जिक्र कर रहे हैं, देखो हैवान किसी को रौंद डालता है उसके ऊपर पांव रख देता है। औ मा असाबत यदिहा और रिजलिहा और रसिहा, या किसी चीज को उसका अगला पांव लग गया या पिछला पांव लग गया या सर लग गया। पांव मारा नहीं है, पांव वैसे लग गया या सर वैसे लग गया लेकिन नुकसान हो गया। औ कदमत, या उसने मुंह से उसको काट दिया। औ खबतत, या उसने अगला पांव मार दिया, पांव मारा उसको। औ सदमत, या उसको टक्कर मार दी भाई। लामा नफहत बिरिजलिहा औ ज़नबिहा, हां उसका जामिन नहीं होगा जो उसने पिछला पांव किसी को मारा, अपने पिछले पांव से किसी को मारा, औ ज़नबिहा, या अपनी दुम से किसी को मारा। देखो सारी सूरतें जिक्र कर दी, पांव लग जाए वैसे लग जाए, अगला पांव लगे पिछला पांव लगे, किसी चीज के ऊपर चढ़ जाए हैवान, वतीअत वो भी जिक्र कर दिया, अगला पांव लग जाए असाबत भी यदिहा, पिछला पांव लग जाए असाबत भी रिजलिहा, सर किसी चीज को लग जाए असाबत भी रसीहा, और दांतों से किसी को काट ले मुंह से काट ले कदमत आ गया, अगले पांव से किसी को मार दे वो खबतत आ गया, पिछले पांव से ये दुम से किसी को मार दे, वो नफाहत भी रिजलिहा और जनबीहा आया, किसी को टक्कर मार दे, सदमत आ गया, सारी सूरतें जिक्र कर दी। तो इनमें से जो पिछली टांग किसी को मार दे या दुम मारे उसका जमान नहीं, बाकी सूरतों का जमान है। भाई क्यों दुम का जमान क्यों नहीं, दुम अगर किसी को मारे या पिछली टांग मारे? कहते हैं इसलिए क्योंकि जो सवार है उसका रुख आगे की तरफ है, तो सामने के पांव गर्दन वगैरह और ये सारा कुछ ये तो उसके सामने है, इनसे तो वो लोगों को बचा सकता है, लेकिन पिछली टांग या दुम जो है वो उसकी आंखों के सामने नहीं है, तो वो उसके सामने नहीं है, लिहाजा वो उसके काबू में नहीं। ये माना है ला मानना फाहत बिरिजलिहा और जनबीहा, उस चीज का जामिन नहीं होगा जिसको उसने मारा अपनी पिछली टांग से और जनबीहा या अपनी दुम से। फैनल एहतराज अनिल वत इवमा युशाबी हो मुमकिन, इसलिए क्योंकि बचना अनिल वत ई रोंदने से, वमा युशाबी हो और इसके मुशाबे जो और चीजें जिक्र हुई इनसे बचना मुमकिन मुमकिन है। बात समझ में आ रही है? फैन अल एहतराज अनिल वत इवमा युशाबी हो मुमकिन, इसलिए क्योंकि रोंदने और इसके मुशाबे और चीजों से बचना मुमकिन है। बिखिलाफ इन नफहति बिर्रिजली वज़्ज़नबी, बखिलाफ पिछले पांव से मारना या दुम से मारना कि इनसे बचना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसकी तरफ उसकी नजर नहीं है। हाजा इंदना, यह हमारे नजदीक है। وعند الشافعي رحمه الله تعالى رحمه واسعه يضمن بالنفحة ايضا, اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ ضامن ہوگا بالنفحة ايضا, پیچھے کسی کو ٹانگ ماری تو اس کا بھی یہ ضامن ہوگا سوار. لان فعلها يضاف الى الراكب, اس لیے کیونکہ اس جانور کا فعل اس کے سوار کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے, इसकी फेल की भी निस्बत किसकी तरफ की जाती है? उसी सवार की तरफ निस्बत की जाती है क्योंकि ये उस पर सवार है, इसका जानवर है। इमाम शाफी रहमल्ला फरमाते हैं कि सवारी का हर फेल की निस्बत सवार की तरफ की जाती है, अगर वो पिछली टांग मारकर भी किसी को हलाक करेगा या किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो लोगों से पूछो कि ये नुकसान किसने किया, तो वो सवार ही की तरफ निस्बत करेंगे कि इस सवार ने यह नुकसान किया है। तो सवारी के फेल की निस्बत किसकी तरफ की जाती है? सवार की तरफ। तो टांग मारना भी सवारी का फेल और उसकी निस्बत भी सवार की तरफ की जाएगी, और जब सवार की तरफ निस्बत हुई तो लिहाजा मालूम हुआ ये उसी का जुर्म है, तो उस पर जमान आएगा। ये माना है लिअन्न फिअलहा युज़ाफ़ु इला राकिबी, क्योंकि सवारी का जो फेल है उसकी निस्बत की जाती है सवार की तरफ। बात समझ में आ गई? औ आतिब इंसान उन बीमार रासत और बालत फित तरीक, रासा या रूसु के माने हैं जानवर का रास्ते में गोबर करना, जानवर का रास्ते में लीद करना, ये क्या है? रासा या रूसु। और बाला या बूलू का माना है पेशाब करना। अब सूरत यह कि एक शख्स सवारी के जानवर पर जा रहा था, उस जानवर ने रास्ते में पेशाब कर दिया या लीद कर दी और उस पर कोई फिसल कर गिरा और हलाक हुआ या नुकसान पहुंचा, कहते हैं इसका जमान नहीं आएगा क्योंकि इससे बचाव मुमकिन नहीं। जानवर चलते चलते ही उमूमन रास्ते में लीद भी कर देते हैं और पेशाब भी कर देते हैं, और अगर इसने उसके लिए ठहराया खास तौर पर पेशाब के लिए, जानवर को खड़ा कर दिया रोक दिया फिर उसने पेशाब किया, या लीद करने के लिए रोक दिया फिर उसने लीद कर दी, तो इसमें जमान आएगा? कहते हैं नहीं, इसमें भी जमान नहीं है, इसलिए क्योंकि बाज जानवरों की आदत होती है जब तक उनको रोकेंगे नहीं वो पेशाब वगैरह नहीं करते, तो इसमें भी कोई इसने तादी और ज्यादती नहीं की। हां अगर इसने वैसे ही रोका जानवर को किसी और काम के लिए, रोका पेशाब वगैरह के लिए नहीं रोका, वो तो किसी के साथ गपशप लगा रहा था रास्ते में खड़े होकर, और फिर इस सूरत में वो पेशाब या लीद करता है और कोई हलाक होता है फिर जमान आएगा। कहते हैं औहतिबा इंसान उन बीमार रासत और बालत फित तरीकी, और अगर हलाक हुआ कोई इंसान बवजह उसके जो हैवान ने रासत उसने लीद कर दी और बालत फित तरीक या पेशाब कर दिया रास्ते में, सा एरा तन इस हाल में कि वो चल रहा था, औ कफा हालिदालिका या उसने इसी के लिए उसको रोका। भाई पीछे आया था ना ला मा नफहत बे रिजलिहा और जनबीहा, कि इस सूरत में जामिन नहीं होगा उसी पर इसका भी आतफ है कि इन सूरतों में भी वो जामिन नहीं होगा, जामिन नहीं होगा अगर इस जानवर के लीद करने या पेशाब करने की वजह से रास्ते में इस हाल में कि वो चल रहा था, औकफहा लिदालिका, या उसने इसी के लिए उसको रोका था। फइन औकफहा लिगैरिही जमीना, अगर उसने उस जानवर को रोका था इसके अलावा के लिए किसी और काम के लिए, जमीना फिर जामिन होगा भाई। फइन्नहा इन रासत औबालत फी तरीक हालत सैर ला यज़मनु, अगर उस जानवर ने लीद कर दिया पेशाब कर दिया रास्ते में, हालत सैरी चलने की हालत में, ला यज़मनु तो वो जामिन नहीं होगा क्योंकि जानवरों की आदत होती है। अम्मा इज़ा औकफहा लितरूस औ तबूला ला यज़मनु ऐज़ा, अगर उसने उस जानवर को रोका ताकि वो लीद कर ले या पेशाब कर रहे तो भी वो जामिन नहीं होगा। लिअन्ना बाज़ा दवा बिला यफ़अलु ज़ालिका इल्ला बादल वकूफ़, इसलिए क्योंकि बाज जानवर वो ऐसा नहीं करते मगर रोकने के बाद ही, कि उनको रोका जाएगा फिर ही करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। व इन औकफहा लिगैर ज़ालिका यज़मनु, और अगर उसने इसके अलावा किसी और काम के लिए रोका था और फिर जानवर ने लीद और पेशाब कर दिया तो अब जामिन होगा। क्यों? लिअन्नहु मुतअद्दिन बिल ईकाफी, इसलिए क्योंकि वो उस शख्स ने तअद्दी की उसको रोकने के जरिए, उसने खुद जानवर को रोककर तअद्दी की है। अगर वो न रोकता आगे निकल जाता तो पहुंच जाता मंजिल पर, वहां वो पेशाब और गोबर कर लेता, लेकिन यहां इसने रोककर खुद गोया क्या कर दी, तअद्दी की है और फिर जानवर ने पेशाब और लीद किया तो उसमें कोई हलाक हुआ तो जमान आएगा। यह माना है लिअन्नहु मुतअद्दिन बिल ईकाफी, इसलिए क्योंकि वो तअद्दी करने वाला है उसको रोकने की वजह से। फइन असाबत बियदिहा औ रिजलिहा हसातन औ नबात, सूरत मसला ये सूरत ये कि एक शख्स सवारी के जानवर पर जा रहा था, ऊंट है, गधा है, घोड़ा है या खच्चर है, और उस जानवर के पांव से कोई कंकरी वगैरह उड़कर किसी की आंख पर लगी और उसकी आंख फूट गई, या इससे गर्दो गुबार उड़ा और किसी के कपड़े खराब हो गए, तो फिर कहते हैं सामान नहीं आएगा। हां, अगर वो जो पत्थर जो उसके पांव से लगकर पांव से टकराकर दूसरे को जाकर लगा है, अगर वो छोटा पत्थर था तो उसमें तो जमान नहीं, लेकिन अगर वो बड़ा पत्थर था तो फिर उसमें जमान आएगा, क्योंकि छोटे से बचना तो मुमकिन नहीं, हां बड़े पत्थर से बचना मुमकिन था भाई। ये माना है फइन असाबत बियदिहा, अगर पहुंचा वो जानवर अपने अगले पांव के जरिए, और रिजलिहा या अगले या पिछले पांव के जरिए, हसातन किसी कंकरी को, औ नवातन या घुटली को, यानी खजूर वगैरह की कोई घुटली थी, औ असारत गुबारन या उसने गुबार उड़ाया, औ हजारन सगीरन या कोई छोटा पत्थर जो है टकराकर यानी उछल गया, फाफा का आइनन औ अफसादा सौबन, बस उस पत्थर ने फोड़ दिया किसी आंख को, औ अफसादा सौबन या किसी के कपड़ों को खराब कर दिया, ला यज़मनु तो वह जामिन नहीं होगा। वज़ामीना बिल कबीरी, और बड़े पत्थर की वजह से जामिन होगा। लियन अल एहतराज अनिल अव्वल मुतअज़्ज़िरुन, इसलिए क्योंकि अव्वल से तो बचना मुमकिन नहीं, छोटा पत्थर हो या कंकरी या गुठली हो उससे तो बचना मुमकिन नहीं। बेखिलाफ इस सानी, बेखिलाफ सानी के बड़ा पत्थर है उससे तो बचना मुमकिन है भाई, तो इसको खुद हैवान को उससे बचा कर ले जाना चाहिए था भाई बड़े पत्थर से। वज़मीना साइकु वल काइदु मा ज़मीना हुर्राकिबु अलैहि कफारतु ला अलैहिमा, भाई एक होता है साइक एक है काइद। साक या सूक सौकन का माना है हैवान को पीछे से हांकना, हैवान आगे चल रहा हो और ले जाने वाला पीछे हो, इसको कहते हैं साइक, ये जानवर को हांक कर ले जा रहा है। और अगर ले जाने वाला आगे हो और हैवान पीछे हो तो इसको कहते हैं काइद भाई। ये जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं काइद है, उसको भी काइद इसलिए कहते हैं क्योंकि काइद जो होता है वो कौम के आगे होता है और कौम उसके पीछे होती है। तो अब सूरत ये कि एक है सवार और एक है साइक पीछे से हांकने वाला और एक है काइद आगे से खींचकर ले जाने वाला, तो इनमें क्या फर्क है, क्या सब पर जमान आएगा? कहते हैं हां भाई, साइक मौजूद हो और हैवान किसी को नुकसान पहुंचा दे तो साइक जामिन होगा, कायद मौजूद हो और हैवान किसी को नुकसान पहुंचा दे तो कायद क्या होगा, जामिन होगा। सवार इसी तरह हैवान के ऊपर मौजूद है और हैवान किसी को नुकसान पहुंचाए तो वो भी जामिन होगा, पीछे तफसील बयान हो चुकी। और साइक और कायद पर वही जमान आएगा जो किस पर आता था, राकिब पर आता था। हां एक बात है कि राकिब कोई सवार है और उस हैवान की वजह से किसी इंसान की जान चली गई, किसी को उसने टांग वगैरह मारी या किसी को उसने दांतों से काटा या टक्कर वगैरह मारी और कोई शख्स हलाक हुआ, तो इस सूरत में जो सवार होता है उस पर कफारा कत्ल भी आता है और वो वरासत से भी महरूम होगा अगर मरने वाला इसका मोरिस था भाई। लेकिन साइक और कायद में ऐसा नहीं है, उन पर कफारा भी नहीं आता और वहां हिरमाने मीरास भी नहीं होगा। तो यहां पर साइक और कायद जो हैं उन पर जमान तो आएगा लेकिन उन पर कफारा नहीं आएगा और हिरमाने मीरास भी नहीं होगा, जबकि सवार जो है उसकी सवारी की वजह से अगर कोई हलाक हो जाता है तो सवार पर जमान भी आएगा और उसके साथ साथ कफारा भी आएगा और हिरमाने मीरास भी होगा। इसलिए क्योंकि सवार जो है वो सवारी पर सवार है, सवारी पूरी तरह उसके काबू में है भाई, पूरी तरह उसके काबू में है, तो वो साइक और कायद के मुकाबले में उस हैवान पर ज्यादा कादिर है, ज्यादा कवि है उनके मुकाबले में। इसलिए यहां पर अगर इसकी सवारी किसी को हलाक कर दे तो इस पर जमान के साथ साथ कफारा भी आएगा और हिरमाने मीरास भी होगा। कहते हैं वज़मीन साइक वल काइद मा ज़मीनहु राकिब, के साइक और कायद भी जामिन होंगे उसी चीज के जिसका राकिब जामिन होता है। वअलैहिल कफारतु ला अलैहिमा, और राकिब पर कफारा भी होगा लेकिन साइक और कायद पर नहीं। ऐ इनकान मकान राकिब साइक औ काइद यज़मनु कुल्लु मिन्हुमा मा ज़मीनहु राकिब, यानी अगर सवार की जगह पर साइक या कायद हुआ तो जामिन होगा उनमें से हर एक उस चीज का जिसका सवार जामिन है। ويجب على الراكب الكفارة لا على السائق والقائد, और राकिब पर जो है कफारा भी वाजिब होगा न के साइक पर और कायद पर। والراكب يحرم عن الميراث للقائد والسائق, और सवार जो है वो महरूम होगा मीरास से न के कायद और साइक, उस कायद और साइक मीरास से महरूम नहीं होंगे। وَزَمِنَ عَاقِلَةُ كُلِّ فَارِسٍ دِيَتَ الْآخَرِ اِنِ اسْتَدَمَا وَمَاتَا, सूरत मसला ये, दो सवार थे अपनी अपनी सवारी पर सवार थे, सफर कर रहे थे और घोड़े को दौड़ाया और इसी में दोनों आपस में एक दूसरे से टकराए और मर गए। तो याद रखिए दोनों सवारों की जो आकिला है उन पर दियत आएगी दूसरे के लिए, पहले सवार की आकिला पर दूसरे सवार की दियत आ जाएगी और दूसरे सवार की आकिला पर पहले सवार की दियत आ जाएगी, यानी पूरे कौम वालों से पैसा इकट्ठा किया जाएगा और एक कौम वाले उस दूसरे एक फर्द को दे देंगे और दूसरी कौम वाले इकट्ठा करके पहले वाले के उस फर्द को यानी उनके वारिसों को दे देंगे। وزمن عاقلة كل فارس دية الآخر, और जामिन होगी आकिला कुल फारिस हर शह सवार की, फारिस घुड़सवार जो है शह सवार, और जामिन होगी आकिला हर शह सवार की दियत अल आखरी दूसरे शह सवार की दियत की। इन इस तदमा अगर वो आपस में टकराए, वह माता और दोनों मर गए। हाजा आइंदना ये हमारे नजदीक है। वाइंदा शाफी रहमहुल्लाह यज़मनु कुल्लु निस्फ़ दियतिल आखरी, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इनमें से हर एक जामिन होगा निस्फ़ दियतिल आखरी दूसरे की दियत का निसफ, आधी दियत आएगी हर एक पर पूरी नहीं, क्योंकि यह शख्स दो फेलों की वजह से मरा है, एक इसका अपना फेल था एक दूसरे सवार का फेल था, तो अपने हिस्से के अंदर जमान नहीं आएगा दूसरे के हिस्से में जमान आएगा। यह माना है वाइंद शाफी रहिमहुल्लाह यज़मनु कुल्लु निस्फ़ दियतिल आखरी, के जामिन होगा इनमें से हर एक दूसरे की निस्फ़ दियत का। लिअन्ना हलाकहु बिफ़िअलैन, इसलिए क्योंकि इसकी हलाकत दो फेलों की वजह से हुई है, फ़िअलु नफ़्सिही व फ़िअलु साहिबिही, एक तो इसकी अपना जाती फेल है और दूसरा इसके साथी का फेल है। फ़यहदुरु निस्फ़ुहु व युअ्तबरु निस्फ़ु साहिबिही, लिहाजा इसका निस्फ़ जो है वो तो रायगा होगा और इसके साथी का निस्फ़ जो है वो मोतबर होगा। دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ قلنا ہم کہتے ہیں فعل کل منہما مباح، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اپنے فعل کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس کا اپنا فعل تو مباح تھا، جانور پر سواری کر رہا تھا، اور کسی شخص کے اپنے مباح فعل کی طرف اس کی ہلاکت کی نسبت نہیں کی جاتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنا مباح فعل کر رہا ہے تو اس کی طرف ہلاکت کی نسبت نہیں کی جاتی. ہم کہتے ہیں جب کوئی شخص مباح فعل کر رہا ہو، یعنی کوئی جائز، کوئی یعنی جو ممنوع نہیں شرعاً، جب بھی کوئی شخص جائز فعل کر رہا ہو اور اس میں وہ ہلاک ہو جائے تو ہلاکت کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی. جیسے راستے میں چلنا ایک مباح فعل ہے، اب ایک شخص راستے میں چل رہا ہے اور دوسرے شخص نے راستے میں کنواں کھودا ہوا ہے، وہ کنویں کے اندر گرا، ہلاک ہوا، تو سب کہتے ہیں بالاتفاق ساری دیت کس پر آئے گی؟ وہ جس نے کنواں کھودا تھا مسلمانوں کے راستے میں، جس شخص نے راستے میں کنواں کھودا تھا اس پر دیت آئے گی. حالانکہ اگر دیکھا جائے، اگر آپ کا اصول مان لیا جائے، پھر تو یہ شخص جو راستے میں چل رہا تھا تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، اور یہ راستے میں چلنا اس کے لیے مباح ہے، تو یہ مباح فعل کر رہا تھا، تو اس کے چلنے کا بھی ہلاکت میں دخل ہے، یہ اس راستے پر نہ چلتا تو یہ ہلاک بھی نہ ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر تو یوں کہنا چاہیے کہ کنواں کھودنے والے پر آدھی دیت آنی چاہیے، لیکن سب کیا فرماتے ہیں کہ کنواں کھودنے والے پر پوری دیت ہے، حالانکہ یہاں بھی اس شخص کا اپنا مباح فعل موجود ہے، وہ جو راستے پر چل رہا تھا. تو ضابطہ یہی ہے کہ جب انسان کوئی مباح فعل کر رہا ہو اور ہلاک ہو جائے تو اس کی ہلاکت کی نسبت اس کے اپنے مباح فعل کی طرف نہیں کی جاتی. تو یہاں بھی جو دو سوار تھے، تو ہر سوار کیا تھا؟ سواری تو ایک مباح فعل ہے، تو وہ اپنا مباح فعل کر رہے تھے، تو اپنے ان کے فعل کی طرف قتل کی نسبت نہیں کی جائے گی، بلکہ یہی کہیں گے کہ دوسرے سوار کی ٹکر سے یہ ہلاک ہوا ہے. تو دونوں میں سے ہر ایک کے عاقلہ پر پوری پوری دیت آ جائے گی دوسرے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قلنا ہم کہتے ہیں فعل کل منہما مباح، ان میں سے ہر ایک کا فعل مباح ہے، یعنی جائز ہے. والمباح فی حق نفسه لا یضاف الیہ الہلاک، اور مباح جو ہے اپنی ذات کے حق میں اس کی طرف نسبت نہیں کی جاتی ہلاکت کی، ہلاکت کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوتی کہ زمان وغیرہ اس کی وجہ سے آئے گا، نہیں. وفی حق غیرہ یضاف، اور غیر کے حق میں اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، یعنی غیر کوئی مباح فعل بھی کرے اور کوئی ہلاک ہو جائے تو اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہلاک ہوا ہے، اس پر زمان آئے گا. وَالسَّائِقُ دَابَّةٍ وَقَعَ أَدَاتُهَا عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ جانور لے کر جا رہا تھا، یہ پیچھے ہے، جانور آگے ہے، اور اس جانور پر زین وغیرہ لدی ہوئی ہے، جو جانور پر سواری کے آلات ہوتے ہیں، زین ہے، لگام ہے وغیرہ، یہ زین یا لگام اس جانور سے گری، کوئی بوجھ وغیرہ نہیں تھا، اسی سواری کے جو آلات تھے وہ گرے اور پھر کوئی شخص مر گیا اس کی وجہ سے، مثلا کسی بچے کے سر پر گرے اور وہ مر گیا اس کی وجہ سے، تو اس صورت میں اس پر زمان آئے گا. اور اسی طرح ایک شخص اونٹوں کی قطار لے کر جا رہا تھا، قطار میں بھائی اونٹ ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، یہ آگے ہے اور اونٹ پیچھے ہیں، تو یہ آگے سے رسی پکڑ کے چل رہا ہے اور پیچھے سارے اونٹ قطار میں ہیں، تو ان میں سے ایک اونٹ نے کسی شخص کو روند ڈالا اور وہ شخص ہلاک ہوا، تو اس قائد پر زمان آئے گا. دیکھیے کہتے ہیں وَالسَّائِقُ دَابَّةٍ، دابا سواری کا جانور بھائی، گھوڑا، گدھا، خچر وغیرہ بھائی. وَالسَّائِقُ دَابَّةٍ، اور ایسے چوپائے کو ہانکنے والا، دابا نکرا ہے اور اس کے بعد وقع فعل آ رہا ہے، ایسے چوپائے کو ہانکنے والا، وقع اداتوہا، کہ جس کے ادات یعنی جس کے آلات سواری جو ہیں وہ گر گئے، علا رجل ان کسی آدمی پر، فمات تو وہ مر گیا. ایسے جانور کا جو سائق ہے آگے آئے گا، زمینت دیت، وہ دیت کا ضامن ہوگا. دونوں مسئلوں کو اکٹھا ہی ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جو اس سواری کا جو سائق ہے، وہ قائد و قطارن، اور اسی طرح اونٹوں کی قطار کا جو قائد ہے آگے سے لے جانے والا، وتی ابعیر منہ، ان میں سے ایک اونٹ نے روند ڈالا، रजुलन, किसी आदमी को जमीनत दियता, तो ये शख्स क्या होगा, दियत का जामिन होगा। ये जो साइक और ये जो कायद पीछे जिक्र हुए, ये दोनों जामिन होंगे। मसला समझ में आ गया। वह इनका न माहू साइकुन, और अगर इस कायद के साथ साइक भी था, ऊंटों की कतार एक कतार को आगे से लेकर जा रहा था और एक पीछे से हांक रहा था, तो फिर दोनों पर जमान आ जाएगा, आधा जमान एक पर और आधा दूसरे पर। यह माना है वह इनका न माहू साइकुन, और अगर इस कायद के साथ कोई साइक भी था, पीछे से हांकने वाला भी था, जमीना, तो दोनों जामिन होंगे। फइन कतला बईरुन रुबिता अला कितारिन बिला इल्म काइदिही रजुलन जमीना आकिलतुल काइदी दियता। सूरत मसला ये, एक शख्स ऊंटों की कतार लेकर जा रहा है, अब एक शख्स ने उस कतार के साथ अपना ऊंट भी बांध दिया, और वो जो कतार ले जाने वाला है उसको पता नहीं, वो तो कायद है ना, आगे है, उसको पता नहीं चला कि पीछे किसने अपना ऊंट भी बांध दिया है, तो इस ऊंट ने फिर किसी को रौंद डाला और वो कोई शख्स हलाक हो गया। तो इस सूरत में जो जमान आएगा वो कायद पर आएगा। किस पर आएगा? कायद पर। और फिर कायद उस आदमी पर, उस बांधने वाले पर रुजू करेगा, क्योंकि ये नुकसान किसकी वजह से आया, उस बांधने वाले, और दोनों की आकेला पर आएगा। किस पर आएगा? आकेला पर आएगा ना, कत्ले आमद तो नहीं है यहां पर, तो आकेला पर आएगी। कहते हैं फइन कतला बईर, पस अगर कत्ल कर दिया, बईर ऊंट को कहते हैं, फइन कतला बईर, अगर कत्ल कर दिया ऐसे ऊंट ने, रुबिता अला कितार, जिसको बांधा गया था कितार में, बिला इल्म काइदिही, बगैर कायद के इलम के, कायद के इलम के बगैर ही जिसको कितार में बांधा गया था उस ऊंट ने कत्ल कर दिया, रजुलन किसी आदमी को। इबारत समझ में आ रही है, ये मफूल है कतला के लिए। फिर तर्जमा देखें, फइन कतला बईर रुबिता अला कितार बिला इल्म काइदिही रजुलन, पस अगर कत्ल कर दिया ऐसे ऊंट ने जिसको बांधा गया था किसी कितार के साथ उसके कायद के इलम के बगैर ही, रजुलन किसी आदमी को, यानी उसको कत्ल कर दिया, तो जमीना आकिलतुल काइदि दियता, तो जामिन होगी कायद की जो आकिला है वो दियत की। व रजऊ बिहा अला आकिलतिर राबिती, और वो जो कायद की आकिला है वो रुजू करेंगे इस दियत के साथ राबित की आकिला पर, बांधने वाले की आकिला पर रुजू करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ये नुकसान उनको हुआ। वजह जिक्र करें, लिअन्ना राबिता अवकाअहुम फी हादिहिल उहदती, इसलिए क्योंकि ऊंट बांधने वाले ने उनको डाल दिया इस तावान के अंदर। शारह फरमाते हैं, अकूल मैं कहता हूं, शारह फरमाएंगे, देखिए भाई इन्होंने क्या कहा। एक आदमी ऊंटों की कतार लेकर जा रहा था, पीछे एक और आदमी ने अपना ऊंट बांध दिया, कायद को पता नहीं था, और इस ऊंट ने किसी शख्स को रौंद डाला, वो कत्ल कर दिया उसको, तो जमान अव्वलन किस पर आया? कायद की आकिला पर। और फिर कायद की आकिला किससे लेंगे? राबित की आकिला से, ऊंट बांधने वाले की आकिला से। यही मसला बयान किया। अल्लामा सदरु शरिया फरमाएंगे कि मुनासिब तो यह है कि कायद की आकिला राबित की आकिला से यह माल न ले, राबित से ले। तवज्जो है, अव्वल जमान किस पर आया? कायद की आकिला, और फिर कायद की आकिला ने किससे वसूल किया? राबित की आकिला से। अल्लामा सदरु शरिया फरमाते हैं कि मुनासिब यह है कि कायद की आकिला राबित की आकिला से न लें यह माल, बल्कि राबित से लें। किससे लें?
राबित से।
क्यों भाई, राबित से क्यों लें? कहते हैं देखो, जिनायत की वजह से किसी पर माल आए तो किस पर आता है? आकिला पर। किस पर आता है? आकिला पर। अच्छा, तो कायद की आकिला पर आ गया माल, अब ये कायद की आकिला को माली नुकसान पहुंचा। तवज्जो है, कायद की आकिला ने किस पे रुजू करना है? इन्होंने क्या कहा, इन्होंने के मतन में क्या कहा? राबित की आकिला पर, बांधने वाला जो था राबित। इन्होंने क्या कहा, कायद की आकिला रुजू करेगी किस पर? कहते हैं भाई आकिला पे तो तब रुजू करते हैं कोई जब जानी नुकसान पहुंचाए, जब
जानी।
और कायद की आकिला तवज्जो है, कायद की आकिला इनका कोई जानी नुकसान हुआ या इनको माली नुकसान हुआ?
इनको माली नुकसान।
भाई जानी नुकसान तो वो आदमी का हुआ था ना, कायद की आकिला का तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इनका तो क्या हुआ है?
माली नुकसान।
दियत देना पड़ रही है इनको, तो ये इनका माली नुकसान हुआ है। और माली नुकसान तो राबित की आकिला पे नहीं आनी चाहिए, वो तो उस शख्स पर आया करता है। नहीं बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखो फिर सुनो भाई, कायद की आकिला ने माल दे दिया और इनको माली नुकसान पहुंचा, माली नुकसान पहुंचा या जानी नुकसान पहुंचा? माली नुकसान पहुंचा। और माली नुकसान किसी को कोई पहुंचाए तो वो आकेला से लिया जाता है या उसी शख्स से लिया जाता है?
उसी शख्स।
तो यहां पर भी उसी राबित से लिया जाना चाहिए, राबित की आकेला से तो नहीं लेना चाहिए भाई, क्योंकि ये कौन वसूल करने वाले कौन है? कायद की आकेला। और कायद की आकेला इनको क्या पहुंचा है? माली नुकसान। और माल में कोई किसी को नुकसान पहुंचाए तो वो उसी शख्स से वसूल किया जाता है, उसकी आकेला से नहीं। लिहाजा राबित से वसूल करना चाहिए, राबित की आकेला से नहीं। भाई बड़ी गहरी बात की अल्लामा सदरुशरिया ने। भाई कहते हैं अकूलु, मैं कहता हूं, यम बगी अंतकून फी माल राबिती, के मुनासिब यह है कि ये जो रुजू होना चाहिए राबित के माल में होना चाहिए। यम बगी अंतकून फी माल राबिती, मुनासिब यह है कि यह दियत जो है राबित के माल में होनी चाहिए, यानी उसके आकिला के माल में नहीं होनी चाहिए। लिअन्न राबित औकाअहुम फी खुसरान अलमाली, इसलिए क्योंकि राबित ने इनको डाला है इस माली नुकसान के अंदर। तर्जमा समझ में आ गया? वहाजा मिम्मा ला यतहम्मलुहु अलआकिलतु, और ये जो माली नुकसान है ये उन चीजों में से है जिसका तहम्मुल आकिला नहीं करते, जो आकिला नहीं उठाते। कालू, फुकहा फरमाते हैं, हादा इदा रबत अवल कितारु फिस सैर, सूरत तफसील बयान कर रहे हैं, कहते हैं ये राबित पर रुजू तब करेंगे, राबित पर, के जब उसने ऊंटों की कतार चल रही थी, चलते चलते उसने ऊंट अपना साथ बांध दिया, जब चलते चलते साथ बांध दिया तो गोया उसने उसने हुक्म दे दिया कि मेरे ऊंट को भी लेकर चलो, गोया उसने हुक्म दे दिया मेरे ऊंट को भी लेकर चलो। सराहतन तो नहीं कहा, जुबान से तो नहीं कहा, लेकिन उसका यह फेल दलालत कर रहा है कि गोया वो कायद को क्या हुक्म दे रहा है, मेरे ऊंट को भी लेकर चलो चलो। तो जब इसने हुक्म दिया है खुद के मेरे ऊंट को लेकर चलो, इसलिए यह जिम्मेदार भी होगा, इसलिए इस पर रुजू भी किया जाएगा। सूरत समझ में आ रही है? इससे दिया फिर बाद में हम वसूल करेंगे, पहले कायद की आकिला देगी और फिर इसकी आकिला से लेंगे। सूरत समझ में आ गई? लेकिन अगर इसने ऊंटों की कतार के साथ अपना ऊंट उस वक्त बांधा जब वो कतार चल नहीं रही थी, एक जगह ठहरी हुई थी, उस वक्त उसने अपना ऊंट बांधा और फिर कायद लेकर चल पड़ा ऊंटों को, तो इस सूरत में अब राबित का कोई कसूर नहीं, उसने कोई हुक्म नहीं दिया मेरे ऊंट को भी लेकर चलो। हो सकता है वो ऐसे ही आया हो, उसने साथ अपना ऊंट बांध दिया कि चलो मैं यहां थोड़ी देर बैठता हूं और फिर मैं चला जाऊंगा, और बगैर उसकी इजाजत के ये उसके ऊंट को लेकर चल पड़े, तो ये जुर्म किसका है? कायद का है। उसको तो पहचान होगी ना अपने ऊंटों की, लेकिन फिर भी वो लेकर चल पड़ा है, तो ये उसने तादी की है और राबित का कोई कसूर इसमें नहीं है, लिहाजा फिर राबित पर रुजू नहीं होगा। सूरत समझ में आ गई? कालू, फुकहा फरमाते हैं, हादा के ये उस सूरत में है, इदा रबता, जब उसने बांधा, वल कितार फिस सैरी, और वो जो कतार थी ऊंटों की वो सैर की हालत में थी, यानी चल रही थी। अन्नहु अमरा बिल कौदी दलालतन, इसलिए क्योंकि इस बांधने वाले ने खुद हुक्म दे दिया उसको हांकने का, दलालतन दलालतन हुक्म दे दिया, उसके इस फेल से, इस फेल ने इस पर दलालत की, गोया उसने हुक्म दे दिया है कि मेरे ऊंट को भी लेकर चलो, क्योंकि ऊंट चल रहे थे और इसने ऊंट बांधा है, गोया इसने भी हुक्म दिया कि मेरे ऊंट को भी लेकर चलो। अम्मा इदा रबता फी गैर हालत इस सैरी, बाकी अगर इसने बांधा फी गैर हालत इस सैरी, یعنی چلنے کی حالت کے علاوہ میں فزمان على عاقلۃ القائد، تو اس صورت میں زمان جو ہے وہ صرف قائد کی عاقلہ پر ہوگا، وہ رابط پر رجوع نہیں کریں گے. لانه قاد بعیر غیره بغیر امره، اس لیے کیونکہ اس نے ہانکا ہے غیر کے اونٹ کو اس کی اجازت کے بغیر، لا صریحا ولا دلالتن، نہ تو اس کی طرف سے کوئی صراحتن حکم تھا، یعنی صاف لفظوں میں تھا، صاف لفظوں میں یوں کہتا نا کہ میرے اونٹ کو بھی لے کر چلو، نہ تو اس نے صراحتن کوئی حکم دیا اور نہ ہی دلالتن کوئی حکم دیا ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے پتا چلے کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ میرے اونٹ کو بھی لے کر چلیں. تو یہ مانا ہے لا صریحن ولا دلالتن، نہ تو صراحتن اس نے حکم دیا ہے اور نہ دلالتن. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ لانه قاد بعير غيره بغير امره لا صريحا ولا دلالتن، اس لیے کیونکہ اس نے ہانکا ہے غیر کے اونٹ کو بغیر اس کے حکم کے، نہ تو صراحتن اور نہ دلالتن، یعنی کسی طرح بھی حکم نہیں تھا. فلا يرجع بما لحقه من الزمان، لہذا وہ رجوع نہیں کرے گا جو اس کو لاحق ہو گیا زمان، جو زمان اس کو لاحق ہوا قائد کو، وہ اس میں اس رابط پر رجوع نہیں کرے گا. ومن ارسل كلبا او طيرا او ساقه فاصاب في فوره زمن في الكلب لا في الطير. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے کتا چھوڑا، کتے کو کھلا چھوڑا، اور یا پرندے کو چھوڑا شکار والے پرندے کو، یا اس نے کتے کو ہانکا، پہلے کھلا ہوا تھا صرف اس نے اس کو ہانکا، کوئی آواز وغیرہ نکالی ہوگی، اور اس کتے نے فوراً ہی کسی کو جا کر کسی کا نقصان کر دیا، تو اس صورت میں ضامن ہوگا، لیکن پرندے میں ضامن نہیں ہوگا. اور اسی طرح کتے کو اگر اس نے نہیں ہانکا، خود کتے نے ویسے جا کر کسی کا نقصان کر دیا، تو اس صورت میں بھی ضامن نہیں ہوگا. معلوم ہوا پرندے کے اندر چاہے ہانکے اس کو چاہے نہ ہانکے، دونوں صورتوں میں ضمان نہیں، اور کتے کے اندر اگر ہانکا ہے تو پھر ضمان آئے گا، اگر نہیں ہانکا تو پھر ضمان نہیں ہے. ومن ارسل کلبا او طائرا، اور جس نے کھول دیا کتے کو یا پرندے کو، ساقہ یا اس کو ہانکا، پرندے یا کتے کو ہانکا، فاصاب فی فوری ہی، تو وہ پہنچا فوراً ہی، یعنی اسی وقت اس نے کسی کا کوئی نقصان کیا، زمین فی الکلب لا فی الطیر، تو وہ کتے میں تو ضامن ہوگا پرندے میں نہیں. ولا فی کلب لم یسقہ، اور نہ ہی اس کتے کے اندر، لم یسقہ جس کو اس نے ہانکا نہیں ہے، اس میں بھی ضامن نہیں ہوگا. الحاصل، حاصل یہ کہ انہ لا یضمن فی الطیر ساق او لم یسق، کہ وہ ضامن نہیں ہوگا پرندے میں چاہے اس کو ہانکے یا نہ ہانکے. وہ یضمن فی الکلب ان ساق، اور کتے میں ضامن ہوگا اگر اس نے اس کو ہانکا ہے. وہ ان لم یسق لا، اور اگر نہیں ہانکا تو پھر ضامن نہیں ہوگا. ففی الکلب ینتقل الفعل الیہ بسبب السوق، کہتے ہیں کتا جو بھی فعل کرے گا اگر اس نے اس کو ہانکا تھا تو پھر اس فعل کی نسبت ہانکنے والے کی طرف ہوگی کہ یہ اس نے ایسا کروایا ہے. یہ مانا ہے ففی الکلب ینتقل الفعل الیہ، تو کتے کے اندر اس ہانکنے والے کی طرف فعل منتقل ہو جائے گا، بسبب السوق، بوجہ اس کے ہانکنے کے. وہ ان لم یسق لا ینتقل الیہ، اور اگر اس نے ہانکا نہیں ہے، کتے نے خود نقصان جا کر کیا، تو لا ينتقل الیہ، کتے کا فعل اس کی طرف منتقل نہیں ہوگا، یہ نہیں کہیں گے یہ اس نے کروایا ہے. بات سمجھ میں آگئے؟ لئنہ فاعل مختار، اس لیے کیونکہ وہ حیوان جو ہے، وہ کتا جو ہے، وہ فاعل مختار ہے، وہ اپنی مرضی سے خود فعل کرتا ہے. ولا یضمن فی الطیر اذا لم یسق، اور وہ ضامن نہیں ہوگا پرندے کے اندر بھی، اذا لم یسق، جب اس نے اس کو نہ ہانکا ہو. وہ قزا انساقا، اسی طرح اگر اس نے پرندے کو ہانکا ہے تو بھی ضامن نہیں ہوگا. لئن بدنہ لا یطیق السوق، اس لیے کیونکہ پرندے کا جو بدن ہے وہ ہانکنے کی طاقت نہیں رکھتا. بھئی پرندہ ہانکتا کیسے ہے انسان حیوان کو؟ کوئی سوٹی وغیرہ ہوگی، کوئی لاٹھی ہوگی، اسے مارے گا، چلائے گا، بھگائے گا اس کو. اور پرندے کو تو کوئی لاٹھی وغیرہ یا چھڑی نہیں ماری جا سکتی، وہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو ختم ہو جائے گا بھائی، زخمی ہو جائے گا. یہ مانا ہے کہ پرندے میں ہانکنے کا بھی اعتبار نہیں. لئن بدنہ لا یطیق السوق، اس لیے کیونکہ پرندے کا جو بدن ہے وہ ہانکنے کی طاقت نہیں رکھتا. فوجودہ کعدمہ، تو اس میں ہانکنا بھی عدم ہانکنے کی طرح ہے. فوجوده کعدمه, تو اس کے اندر سوق کا ہونا بھی کعدمه, سوق کے نہ ہونے کی طرح ہے. اقول میں کہتا ہوں, نعم ہاں, لا یتیق الضرب, پرندہ جو ہے وہ ضرب کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو ضرب لگائی جائے. اما سوقہ, اور باقی ہانکنا کیسے ہے, ہانکتے کیسے ہیں, وہ بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں, اما سوقہ فبالزجر والسیاح, تو وہ ڈانٹ کے ذریعے ہوگا, والسیاحی اور چیخ کے ذریعے ہوگا. ایسے ہی ہانکے گا نا, کوئی آواز نکالے گا, کوئی چیخ مارے گا, جس سے وہ کتا یا پرندہ کیا ہے فوراً چلیں گے بھائی, وہ فوراً روانہ ہوں گے. تو کہتے ہیں, اما سوقہ فبالزجر والسیاح, تو ہانکنا جو ہے وہ ڈانٹ کے ذریعے یا چیخ کے ذریعے ہوگا. بخلاف الصید, بخلاف شکار کے, بخلاف کس کے,
شکار.
بھائی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ کتا جو ہے وہ فاعل مختار ہے, وہ خود اپنے فعل کرتا ہے. جب خود اپنے فعل کرتا ہے تو پھر تو اس کا شکار بھی حلال نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اللہ کا نام لے کر شکار پر کتے کو چھوڑا جائے تو اس کا شکار حلال ہوتا ہے. اور اب آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کتا کیا ہے, فاعل مختار ہے, وہ خود فعل کر رہا ہے, مالک کی طرف فعل کی نسبت نہ کرو. کتا خود کیا ہے, فاعل مختار, اپنے اختیار سے فیل کرنے والا ہے. کہتے ہیں, ہاں شکار میں بھی بات ایسی ہی ہے, وہ اپنے اختیار سے ایک فیل کرنے والا ہے, لیکن وہاں مالک کے بھیجنے کا ہم اعتبار کرتے ہیں حاجت اور ضرورت کی وجہ سے. اگر اس کا اعتبار نہیں کریں گے پھر تو کتے کے ذریعے شکار کا راستہ ہی بند ہو جائے گا. تو وہاں مجبوری کی وجہ سے ہم نے کہا کہ کتے کا شکار ایسے ہی ہے جیسے مالک خود کیا کر رہا ہو, شکار کر رہا ہو. تو وہاں ضرورت اور حاجت کی بنا پر تھا, یہاں پر ضرورت اور حاجت نہیں ہے. یہ مانا ہے, بخلاف الصید, بخلاف شکار کے. فَإِنَّهُ يَحِلُّ الصَّيْدُ بِمُجَرَّدِ الْإِرْسَالِ لِلْضَرُورَتِ, کیونکہ وہ شکار جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے صرف بھیجنے سے ہی, لِلْضَرُورَتِ, بوجہ ضرورت کے. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ الزَّمَانَ فِي هَذَا كُلِّهِ احْتِيَاطًا, جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے زمان واجب کیا تھا اس سب کے اندر بطور احتیاط کے. والمشائخ رحمہ اللہ اخذوا بقولہ, اور مشائخ رحم اللہ نے اخذوا بقولہ, ان کے قول کو لیا ہے. امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کتے کو ہانکا ہے یا نہیں ہانکا, پرندے کو ہانکا ہے یا نہیں ہانکا, وہ سب میں فرماتے ہیں زمان آئے گا, سب میں زمان. اور فقہا نے انہی کے قول کو لیا ہے کہ اس میں احتیاط ہے تاکہ لوگوں کے جان و مال محفوظ ہو جائیں, ورنہ تو ہر شخص یہی کہے گا میرے کتے نے یا میرے پرندے نے آپ کے پرندوں کو یا آپ کی چیزوں کو نقصان پہنچایا یا آپ کے جانوروں کو نقصان پہنچایا, بھئی میں نے تو نہیں بھیجا تھا, وہ خود چلا گیا تھا. بات سمجھ میں آگئے؟ تو فقہا نے ان کے قول کو لیا ہے بھائی. ولا فی دابت منفلتۃ اصابت نفسا او مالا لیلا او نہارا. انفلتا, انفلتا کا معنی ہے جانور کا کھل جانا. انفلتا تی دابت, جانور کھل گیا. تو منفلتا وہ جانور جو کھل گیا ہے. کہتے ہیں, ولا فی دابت منفلتۃ, اور نہیں ہوگا زمان ایسے جانور میں, منفلتتن, جو کھل گیا ہو. اور اصابت نفسن او مالن, اور وہ کسی نفس تک پہنچا یا مال تک, یعنی نفس کا نقصان کیا اس نے, یا کسی کو جانی نقصان پہنچایا یا کسی کو مالی نقصان پہنچایا, تو اس کا زمان نہیں آئے گا. لیلن او نہارن, چاہے رات کو ہو چاہے دن کو. انہوں نے آپ کو بتلایا کسی کا کوئی جانور اگر چھوٹ جائے, گائے بیل وغیرہ یا اونٹ چھوٹ گیا, کھلا رہ گیا, اور اس نے پھر کسی کو کوئی نقصان پہنچایا, چاہے مالی نقصان پہنچایا یا جانی نقصان پہنچایا, تو اس حیوان والے پر کوئی زمان نہیں آئے گا. آپ کہیں گے بھئی کیوں نہیں زمان آیا, اس کے حیوان کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہوا. بھئی اس نے کوئی جان بوجھ کر نہیں چھوڑا, جانور کھل گیا تو اب اس نے نقصان پہنچا دیا, اور تو اس میں اس آدمی کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. اور اصل اس کے اندر جو ہے وہ حدیث آتی ہے, حدیث میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے جرح العجماء جبارن بھائی, جرح العجماء جبارن, کہ حیوان یہ جو بے زبان جانور ہیں اگر یہ کسی کو نقصان وغیرہ پہنچا دیں تو یہ رائے گاہ ہے بھائی، حدر ہے، اس کا کوئی زمان وغیرہ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں زمان نہیں آئے گا بھائی. اور نیز اس آدمی کا بھی کوئی عمل نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کر حیوان کو کھلا نہیں چھوڑا، بس حیوان کھل گیا بھائی اور اس نے نقصان کر دیا، تو اس پر کوئی زمان نہیں. یہ مانا ہے ولا فی دابت منفلتت اصابت نفسا او مالا لیلا او نہارا، اور نہیں ہے زمان ایسے جانور کے اندر جو کھل گیا ہو پس وہ جا پہنچا کسی نفس کو یا مال کو، یعنی ان کا نقصان کر دیا، لیلا او نہارا رات کو یا دن کو. ومن ضرب دابتا علیہا راکب، اور جس نے مارا کسی ایسے جانور کو، علیہا راکب جس پر کوئی سوار تھا، ایک آدمی جانور پر سوار ہے اور پیچھے کسی آدمی نے اس کو مارا، او نخسہا یا اس کو کوئی چیز چبھوئی. نخس کہتے ہیں مثلا سوار بعض اوقات کیا کرتا ہے، وہ جو لاٹھی ہوتی ہے اس کا سر حیوان کے پیٹ پر مار دیتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، پیٹ پر مار دیا یا پچھلے دھڑ پر مارتا ہے تاکہ جانور تیز ہو جائے بھائی، یا اسی طرح کوئی نوکدار چیز مارتا ہے تاکہ جانور کو تکلیف ہو اور وہ تیز چلے، تو اس کو کہتے ہیں نخس، نخس ینخس. تو کسی شخص نے اس حیوان کو وہ نوکدار چیز چبھو دی، او نخسہا یا کسی شخص نے اس حیوان کو کوئی نوکدار چیز چبھو دی، کس حال میں، سوار اس پر موجود ہے. فنفحت، پس اس جانور نے پچھلی ٹانگ ماری، او ضربت بیدیہا یا اپنے اگلے پاؤں سے مارا، آخرا کسی دوسرے آدمی کو، او نفرت یا جانور جو تھا وہ بدک گیا، ڈر گیا، فصدمت ہو اس نے اس کو ٹکر مار دی، کسی آدمی کو، کسی دوسرے آدمی کو اس نے ٹکر مار دی وہ ڈر کر، وقتلت ہو اور اس کو قتل کر دیا، تو زمینہ ہوا وہ جو مارنے والا ہے یا وہ جو نوکدار چیز چبھونے والا ہے وہ زامین ہوگا، لر راکبو سوار زامین نہیں. سورت سمجھ میں آ گئی. ہذا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے، وعند ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان زمان علی الراکب والناخس نصفین، کہ زمان جو ہے سوار اور وہ نوکدار چیز جو بھونے والے پر آدھا آدھا ہوگا، امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں وہذا اذا نخسہ بلا اذن الراکب، یہ کہتے ہیں اس وقت ہے اگر اس نے وہ نوکدار چیز اس جانور کو چبھوئی بلا اذن الراکب، سوار کی اجازت کے بغیر، پھر اس پر زمان آئے گا. اما اذا نخسہ باذن ہی، ہاں اگر اس آدمی نے سوار کی اجازت سے اس کو وہ نوکدار چیز چبھوئی، فلا یزمنو، تو پھر وہ چبھونے والا ضامن نہیں ہوگا. سورج سمجھ میں آ گئے. لأنه امرہ بما یملکہ، اس لیے کیونکہ اس کو سوار نے حکم دیا تھا اس چیز کا جس کا یہ مالک تھا بھائی. لأنه امرہ بما یملکہ، اس لیے کیونکہ سوار نے اس کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا وہ خود مالک ہے، جس کا وہ خود مالک ہے بھائی. دیکھو سوار مالک ہے کہ وہ چاہے تو اپنی سواری کو ضرب لگائے، بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں چھڑی ہے یا کوڑا ہے، اس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، سواری کو مارتا ہے، وہ مار سکتا ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس فیل کا مالک ہے. اسی طرح وہ سواری کو، اپنی سواری کو کوئی نوکدار چیز چب ہوتا ہے تاکہ سواری تیز چلے، اس کا بھی وہ مالک ہے. تو لہذا اگر سوار خود کرے اس طرح اور سواری کسی کو نقصان پہنچائے تو سوار ضامن ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اور شخص سوار کے کہنے پر سواری کو کوئی نوکدار چیز چب ہوتا ہے یا اس کو سواری کو مارتا ہے اور اس میں پھر سواری کسی کو نقصان پہنچا دیتی ہے، تو اس کو یہ حکم کس نے دیا تھا، سوار نے. اور کس چیز کا حکم دیا، اس فعل کا جس کا سوار خود بھی مالک تھا، اس کو بھی یہ اختیار تھا. تو لہذا اب زمان سوار پر آئے گا، اس شخص پر نہیں آئے گا جس نے سوار کے کہنے پر ایسا عمل کیا. تو اس صورت میں صرف سوار پر زمان آئے گا. اذن نخس فی معنی السوقی، اس لیے کیونکہ کوئی چیز چب ہونا یہ بھی ہانکنے کے معنی میں ہے. فانتقل الی الراکبی، تو یہ فعل بھی کس کی طرف منتقل ہو جائے گا، سوار کی طرف. فلا یزمن بالنفحتی، تو اس صورت میں پچھلی ٹانگ مارنے کی صورت میں ضامن نہیں ہوگا. نفحہ کس کو کہتے ہیں، پچھلی ٹانگ سے مارنا، تو اس سے ضامن نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں فلا یضمن بالنفحتی تو ضامن نہیں ہوگا پچھلی ٹانگ مارنے کی وجہ سے کما اذا نخسر راکب الدابت فنفحت جیسے کہ سوار نے کوئی چیز جب ہوئی الدابت اس جانور کو فنفحت تو اس نے پچھلی ٹانگ ماری تو اس صورت میں وہ سوار ضامن نہیں ہوگا. حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے خود ہی سواری کو مارا اور یا اس کو کوئی چیز چب ہوئی اور اس سواری نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو وہ ایسا کرنے والا شخص ضامن ہوگا, اور اگر سوار نے ایسا کیا یا سوار کے کہنے پر کسی نے ایسا کیا اور پھر سواری نے کسی کو نقصان پہنچایا تو سوار اس کا ضامن ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں البتہ اس میں بھی انہوں نے قید بڑھا دی کہ اگر پچھلی ٹانگ کے ذریعے حیوان کسی کو مارتا ہے تو اس کا ضمان نہیں آئے گا سوار پر. وفی فق عین شات القصاب ما نقصها فقاء, آپ کی کتابوں میں الف بھی ہوگا, ہاں یہ الف نہیں ہونا چاہیے, یا الف کے اوپر حمزہ لکھ دیں اور نیچے زیر ڈال دیں. بھائی فقاء یفقع فقعا کا معنی ہے کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالنا, آنکھ کسی کی ختم کرنا. صورت یہ بھائی, ایک شخص نے قصاب جو ہے قصائی جو ہے اس کی بکری کی آنکھ پھوڑ ڈالی تو اس پر کتنا زمان آئے گا؟ کہتے ہیں بھائی قصائی تو بکری ذبح کرتا ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں, لہذا بکری کی میں جتنا نقصان آیا وہ زمان آئے گا. یہی بکری آنکھوں کے ساتھ اس کی قیمت کتنی تھی اور ایک آنکھ کی وجہ سے کتنا نقصان آ گیا تو وہ فرق جو ہے وہ زمان دینا پڑے گا. لیکن اس کے بجائے اگر کسی شخص نے کسی کے گھوڑے گدھے خچر اونٹ یا گائے بیل کی ایک آنکھ پھوڑ دی تو پھر اس جانور کی چوتھائی قیمت دینا پڑے گی. کتنی قیمت؟ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان جانوروں سے جب کام لیا جاتا ہے, آپ جانتے ہیں بھائی گھوڑے گدھے خچر اونٹ اسی طرح بیل گائے وغیرہ, ان سے بعض اوقات ان پر بوجھ بھی لادا جاتا ہے, بعض ان پر کچھ بوجھ وغیرہ لاتے ہیں, بعض ان سے کھیتی باڑی وغیرہ کے بھی کام لیتے ہیں. تو ان سے جب بھی کام لیا جاتا ہے تو وہاں چار آنکھیں ہوتی ہیں, دو چلانے والے کی اور دو ان کی اپنی, تو کتنی آنکھیں ہوئیں؟ چار. اور ان چار میں سے اس نے ایک آنکھ پھوڑ دی تو چوتھائی قیمت آنی چاہیے, اور بکری کے اندر قیمت کا جو نقصان تھا وہ دیں گے, وہاں چار کا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ بکری تو کس لیے تھی؟ صرف گوشت کے لیے, اور یہ جانور ان سے تو اور بھی کام لیے جاتے ہیں. بھائی کہتے ہیں وفی فق عین شات القصاب, اور قصاب یعنی قصائی کی بھیڑ بکری کی آنکھ کو پھوڑنے کی صورت میں ما نقصہا وہ جو اس کے اندر کمی آ گئی اس کا زمان آئے گا. وفی عین بقرۃ الجزاری, جزار بھی گوشت کو فروخت کرنے والا یا قصائی جو ہے وہ ہے, اور قصائی کی گائے کی آنکھ میں وجزوری ہی اور اس کے اونٹ کے اندر, اونٹ یا اونٹنی بھائی جو اس کی ہے اس میں جس کو ذبح کے لیے رکھا گیا ہے اس کی آنکھ میں, والحماری اور گدے میں, والبغلی اور خچر میں, والفرسی اور گھوڑے میں, ان سب کی آنکھوں کو پھوڑنے کی صورت میں ربع القیمتی ان کی قیمت کا چوتھائی آئے گا. لأنه انما يمكن اقامة العمل بها باربع اعین, اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ عمل قائم کرنا ممکن ہے, ان کے ذریعے کوئی کام کیا جاتا ہے, باربع اعین چار آنکھوں کے ذریعے, عینیہا وعینی المستعملی دو ان کی آنکھیں ہیں اور دو استعمال کرنے والے کی آنکھیں, تو اب ایک آنکھ پھوڑ دی تو چوتھائی قیمت آئے گی. وعند شافعی رحمہ اللہ یجب النقصان, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نقصان واجب ہوگا, کما فی شات القصابی جیسے کہ قصائی کی بکری میں تھا کہ قیمت کا فرق لگائیں گے, ایک سلامت آنکھ والی جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہو اور ایک وہ جس کی ایک آنکھ پھوڑ دی گئی ہو, تو جتنا فرق ہوگا وہ زمان آئے گا. قلنا ہم کہتے ہیں فی شات القصاب المقصود اللحم, کہ قصائی کی بھیڑ بکری میں تو صرف گوشت ہی مقصود ہوتا ہے اور ان میں تو اور بھی کام مقصود ہوتے ہیں, بات سمجھ میں آ گئی. حتیٰ کہ گائے بیل جو ہے ان کے ذریعے بھی حل بھی چلایا جاتا ہے, اور ہلکا کچھ تھوڑا بہت بوجھ جو ہے وہ بھی ان پر لاد کر کے لے جاتے ہیں کبھی, تو لہٰذا ان کا یہ حکم نہیں ہے. اور یاد رکھیے اس مسئلے کے اندر جو انہوں نے کہا نا قصائی کی بکری یا قصائی کا اونٹ وغیرہ, یہ قصائی کی قید اتفاقی ہے بھائی. کیا ہے؟ اتفاقی ہے, کیونکہ عموماً اس کی بھیڑ بکری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہی ذبح کے لیے ہے, ورنہ عام مسئلہ ہے کوئی بھی بھیڑ بکری ہو اگر ذبح کے لیے, بلکہ کوئی بھی حیوان اگر ذبح کے لیے تیار ہے کیا ہوا ہے کہ ابھی اس کو کیا کرنا ہے ذبح کے لیے, اور کوئی کام اس سے لینا ہی نہیں ہے, بس اب ذبح کے لیے رکھ لیا اس کو یا ذبح کرنے لگے ہیں, تو اس صورت کے اندر اگر کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو جو نقصان آیا وہ ہی آئے گا. اور اگر بکری کے علاوہ اور کوئی حیوان تھا, گائے بیل اونٹ اور گدا خچر یا گھوڑا وغیرہ, تو ان باقی حیوانات میں وہ تو صرف گوشت کے لیے نہیں ہوتے, ان سے تو اور بھی کام لیے جاتے ہیں, تو پھر اس صورت میں وہاں وہ تو اس صورت میں پھر وہاں ایک آنکھ پھوڑ دی تو ربع قیمت آ جائے گی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر کوئی گائے لے کر آیا قصاب اور وہ ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے, اب اس کو ذبح کرنا ہے اس نے, اور پھر کسی نے آنکھ پھوڑ دی, تو اس صورت میں پھر ربع قیمت نہیں آئے گی, کیونکہ یہ تو ابھی اس کو ذبح کرنے لگا ہے, پھر اس صورت میں بھی وہی نقصان ہی آئے گا جو کمی آ گئی اس کے اندر. بات سمجھ میں آ گئی, بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.